हरे कृष्ण। तो अभी हमारा ये जो दो दिन का सत्र चल रहा है, ढाई दिन का, तो उसका ये दूसरा सेशन है। ये सायंकालीन सत्र में जो आप लोग पधारे हैं, सबको मैं विशेष स्वागत करना चाहूँगा इस्कन की तरफ से। तो सुबह हम सत्र में जो चर्चा किए थे नारद जी की भ्रमण, नारद जी ने किस लिए भ्रमण शुरू किए थे? हाँ, कौन भगवान के प्रिय है, भगवान की कृपा किस पर है, ये ढूंढने के लिए नारद जी ने चले। तो अभी उनके यात्रा के दौरान और क्या करते हैं अब चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद जी ने इस भूमंडल में धरती के ऊपर जो दो भक्त के साथ भेंट किए और जिनको भगवान के कृपा के पात्र करके माने थे, उनसे उन्होंने अपना आर्गुमेंट सुनने के बाद बोले कि नहीं नहीं, उनसे तो और अधिक कृपावान है। तो सबसे पहले तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के अवसर पर जो ब्राह्मण को देखे, उन्होंने जिन्होंने कितने भली भांति विधि पूर्वक भगवान की पूजन और दान भोजन आदि सब प्रकार से किया, सम्मान आदि किया, तो उसको देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए थे। और उसके बाद उनके कथन के अनुसार जो दक्षिण भारत में राजा के पास गए, उन्होंने भी सपरिवार नृत्य कीर्तन के साथ सारे राज्य को भक्ति में लगाना, भगवान की सेवा पूजा तुच्छ से तुच्छ सेवा में जोड़ना सब प्रकार कर रहा था। लेकिन अंततः ये भूमंडल में जो दो भक्त को उन्होंने देखे, उन दोनों का जो क्रिया था, भले हम लोग को भी लगता है कि नारद जी को भी लगा कि ये तो बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर है, लेकिन पता चलता है कि उनके जो क्रिया था वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं था, वो भक्ति का आरोप मात्र था। एक प्रकार भक्ति होता है जिसका नाम है आरोप सिद्धा भक्ति। आप शायद सुने भी होंगे ना, नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। तो उसका अर्थ ये होता है, आरोप समझते समझते ना, आरोप किसको बोलते हैं, इसको बताते हैं ब्लेम। तो भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का ब्लेम करते हैं, कुछ कार्य भक्ति नहीं है, बट वी आर ब्लेमिंग इट एज डिवोशन। जैसे हम सभी इसी खत्म है, जैसे अभी गर्मी पड़ रहा है ना, नहीं गर्मी लग रहा है तो आइसक्रीम या ऐसे ठंडी चीज़ कुछ खाने के लिए मन कर रहा है, तो बोलो अरे आइसक्रीम मंगाओ यार, आज आइसक्रीम खाते हैं। तो डिवोटी थे बोले अरे भूख नहीं लगा, भूख लगाओ। हाँ अब आइसक्रीम खाने का इच्छा किसका था, हमारा था। हम भगवान से कंसल्ट किए, भगवान का आइसक्रीम चाहिए क्या, नहीं कुछ भगवान के ज़माने में आइसक्रीम होता भी नहीं होगा, सुने भी नहीं होंगे, हमको खाना था हम मंगाए। लेकिन आओ तुलसी पत्ता डाल करके मार ताली उठा थाली, क्या करे इतने टाइम लग रहा है, इतनी भूख लग रही, इतना टाइम लग रहा है, और ताली मार के लेकर बोले प्रसाद खा। बोले कहा है कि प्रसाद है भाई, तुम अपने मन से कर ले। तो भले दिखाई पड़ता है, इसलिए भगवान कहते हैं शुरुआत में इसे करना ही पड़ेगा। जो भागवत गीता में श्लोक आया है, जत करोसी जदस्नासी जत जुहुसी ददासियत जत तपस्वसी कौंतेया तत्कुरुस्व मदर्पणम। अब जो कुछ करता है, खाना पीना देना तपस्या आदि दान दिखाना जो भी करता है, कम से कम मुझे अर्पण करके करो हे कौंतेया। तो करते तो हम, भगवान देखिए क्या कहते हैं, तू तो करता है तेरे लिए, लेकिन कम से कम दोष मुक्त होने के लिए मुझे दिखा दो, मुझे अर्पण कर दो। तो ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का आरोप है। उसमें स्टार्टिंग इसमें करो ये भी ठीक है, कम से कम वो तो करते हैं भक्ति का नाम लेते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है ना, जो अपने आइसक्रीम खरीद के, जैसे ठंडी के समय में बोले आज पकौड़ा बनाओ, आज ऐसे गरम गरम समोसा पकौड़ा बनना चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए। अरे भगवान को नहीं चाहिए, चाहिए तो हमको, और भगवान के नाम में चढ़ाते हैं। तो इसलिए भक्ति का आरोप है। लेकिन जिस दिन आएगा समय, नहीं हम अपने लिए नहीं बनाएंगे, भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान के लिए इंग्रेडिएंट्स आएगा, उन्हीं के लिए बनाना होगा, उनके लिए सब कुछ, तो ही भक्ति, वो भगवत प्रसन्नता के लिए। इसमें स्वसुख वासना की गंध भी नहीं रहेगा, आपने सुख का किसी प्रकार की विवेचना नहीं रहेगा, तो ही शुद्ध भक्ति होगा। तो इन दो दो प्रकार के भक्त भूमंडल में देखे, बड़े सुंदर भाव से पूजा किए, दान दक्षिणा सब निष्ठा के साथ किए, लेकिन उनके जो लक्ष्य था ये सुख प्राप्ति था, स्वर्ग सुख के आशा था, इसलिए उन्होंने चाहते थे। और राजा भी बोला इंद्र की, अरे वो कितना कर रहे, मैं तो त्रिताप से दग्धीभूत हूँ, मेरे तो जीवन थोड़े दिन के है, मेरे संपत्ति भी थोड़े दिन के है, हम धरती में रहते हैं कहाँ इसी प्रकार की समस्या, कैसे हम देवताओं ज्योतिर्मान पुरुष होते हैं, उनके खान पान भी कितने शुद्ध है, उनका कैसे वैभव है, कैसे असुर है, कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या मैंने स्वर्ग सुख की कामना उनका था। उस जो प्रयागराज के ब्राह्मण का राज सुख की कामना था, और राजा का इंद्र सुख की कामना था। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, किस लिए कर रहे हैं ये बड़ी बात है, इसी के ऊपर निर्णय किया जाएगा हम क्या कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए इन दोनों से ऊपर उठ करके, ये इतने शुद्ध भक्त नहीं था, तो ऊपर उठ करके अब नारद जी जब गए स्वर्गलोक में, तब परीक्षित महाराज कहते हैं माँ देवर्षि नारद ने इस राजा के मुख से इस प्रकार के बड़ाई सुन करके देवराज का, तो सीधा अपने डायरेक्ट फ्लाइट लिए अमरावती के लिए, और जा करके यहाँ जब उतरे तब उन्होंने देखे, वहाँ उतर करके देखे कि साक्षात देव सभा लगा हुआ है इंद्र भवन में, सुधर्मा सभा कक्ष में भीड़ लगा हुआ है, सारे बड़े बड़े देवता लोकपाल बैठे हैं, उनके बीच में साक्षात भगवान उपेंद्र गरुड़ पृष्ठ में बैठे हुए हैं, गरुड़ पे भगवान उपेंद्र विराजमान है, और उनको स्वर्ग के नंदन कानन के जो पारिजात पुष्प के सुंदर माला पहना गया है, पूरे शरीर में सुंदर सुंदर केसर मिश्रित चंदन में सजा चंदन के चर्चित किया गया है, चंदन बेस किया गया है, और नाना प्रकार के आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि पहनाया गया है, अमृत आदि सुंदर सुंदर पकवान उनको भोग लगाया गया है, और सिद्ध चारण गंधर्व किरनर आदि मिल करके विविध प्रकार के स्तुति वाद्य नृत्य गीत हर प्रकार से उनको रिझाना, उनको प्रसन्न सुख देना चाहते हैं। माता देव माता अदिति पास में खड़े होकर के हाथ लगा करके उनको लालन कर रहे हैं, बेटा हमारा ठीक है ना, कैसे ना, ऐसे माँ जैसे कहते हैं बेटा, ऐसे करते हैं। और अगस्ती आदि और बृहस्पति आदि बड़े बड़े देवगुरु पंडित ब्राह्मण और स्तुति पढ़ रहे हैं उनके, सुक्त स्तुति पाठ कर रहे हैं, और साक्षात देवराज इंद्र अपने अर्धांगिनी शची के साथ पूर्ण विभूति के साथ उनके पास में खड़े होकर हाथ जोड़ करके उनके उपकार को, जो जो उनके ऊपर एहसान किए थे भगवान ने उपेंद्र ने, उनको याद करके उनके जस और स्तुति को गा रहे, गाते गाते उनके हजारों आंख से आंसू बहाते हैं, रो रो कर भगवान इंद्र के 1000 आंखें पता नहीं, पूरे आंख सारे आंख से आंसू बहता हुए बहाते हुए उनके उपकार को याद करते हुए और उनको जस गान करते हैं। और इस प्रकार के सभा के बीच में भगवान के बीच में सारे उनको लगे हैं, इस प्रकार कहते हैं भगवान उपेंद्र भी गरुड़ के ऊपर बैठ करके बीच बीच में सबके ऊपर देख रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते मुस्कुराते बड़े मेघ गंभीर वाणी से बोलते हैं कि हे इंद्र, हे सचिपति, निर्भय रहो, कोई भय नहीं, दानव के ऊपर कोई भय करने का जरूरत, ऐसे उनको अभयदान कर रहे हैं। जैसे इंद्र बहुत प्रसन्न होते हैं, वाह प्रभु हमको कितने अभयदान करते हैं, हमारा सपोर्ट में है, हमारा फर्म है, तो इंद्र की कृपा करके इस गंभीर वाणी से उनको अभय प्रदान करते हैं। और इस प्रकार जब नारद जी ने देखे, उत्तर के लैंडिंग करते स्पेस से देखे, बोले वाह क्या पूजा, यहाँ तो मैं सालग्राम पूजा देख रहा था, यहाँ तो मंदिर में विग्रह पूजा देख रहा था, यहाँ तो साक्षात गरुड़ वाहन श्री हरि श्री उपेंद्र साक्षात पूजा पा रहे हैं, साक्षात देवताओं ने दिव्य सामग्री के द्वारा उनके सेवा कर रहे हैं, विविध प्रकार के स्तुति वाद्य नृत्य और किस प्रकार लालन पालन भगवान ने उनको भोग आरोग रहे हैं और उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उनको अभय वाणी प्रदान कर रहे हैं, इतनी सुंदर बात। तो नारद जी ने बैठ कर देखने लगे किस प्रकार उपेंद्र को उन्होंने देव सभा में उनके चर्चा हो रहा है, उसको देख करके नाराज जी ने कृतकृत्य, वाह ऐसे सीधा सीधा डायरेक्ट भगवान की सेवा, ऐसा और सेवा करके भोग और सब करके सबके आशीर्वाद सबको दे करके फिर भगवान उपेंद्र ने चल दिए वैकुंठ की ओर। जब चले इंद्र और उनके साथ साथ कुछ लोकपाल सूर्य चंद्र आदि उनके पीछे पीछे चल पड़े, सर 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 जैसे कोई बड़े आदमी जाते हैं छोड़ने के लिए जाते हैं ना, अने तो उनके पीछे पीछे गए, यहाँ तक गए। हाँ कहते हैं कि जो उपेंद्र के साथ भगवती लक्ष्मी भी थे, कीर्ति नाम की भगवती लक्ष्मी, वो भी भगवान को पान दे रहे थे खाने के लिए, भगवान लीला से पान भी चुबा रहे थे। तो जब गए जाकर वैकुंठ में अपने भवन, तभी भी इंद्र उनके पीछे पीछे जा रहा था, उनके घर तक गया, उनके रेसिडेंस तक गया। जब भगवान ने क्वार्टर खोले, द्वार पार ले जा करके अपने भवन में भगवान बैठे, पलंग पर रत्न पलंग पर विराजमान किए, तो लेटे भगवती आकर के लक्ष्मी आकर के उन पैर पलटने लगी, तभी भी इंद्र खड़े थे हाथ जोड़ करके, सर 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 सर, अरे वो छोटे भाई है उनके, भगवान उनके छोटे भाई लगेंगे, लेकिन फिर भी इतने हाथ जोड़ खड़े थे। तो उपेंद्र उनको बोले अब जाओ, अब अपने काम में जाओ, ठीक फिर मिले। तो इस प्रकार उनसे विदा लेकर के इंद्र जब भगवान रेस्ट ले उनको विदा कर दिए इंद्र को, तो इंद्र ने आया जब आकर के अपने भवन में देव सभा में जो आकर बैठे अपने आसन पर बैठ करके याद कर रहे थे कैसे प्रभु की कृपा, आज कैसे पूजा स्वीकार किए, कैसे कृपा किए, ऐसे कह रहे थे सारे देव सभा में, वही चर्चा हो रहा था। नारद जी उनको देखकर और प्रसन्न, बोले इसी सेवा किया, भगवान को अपने घर में छोड़ करके आया, भगवान से साक्षात आशीर्वाद लेकर के अभी उनको मनन भी कर रहा है, याद कर रहा। तो नारद जी सीधा देखे कि ओ वास्तविक कृपा तो उनके ऊपर है ही, तो सीधा गाड़ी पार्किंग में रख करके बाहर में सीधा अंदर घुस गए। अंदर जा करके इंद्र के पास इंद्र को प्रणाम नहीं करेंगे, देवर से उनके सीनियर मोस्ट है, तो जा करके हाथ उठाए आशीर्वचन देने के लिए। इंद्र उठ करके प्रणाम किया, देवर्षि जी स्वागत प्रणाम किया। तो उनको जैसे प्रणाम किए तो देवर्षि तुरंत बोले, रे इंद्र मैं सुना था आपके बारे में लेकिन आज तो मैं देखा, आज मैंने खुद देखा कि किस प्रकार आप भगवान के कृपा के पात्र हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय है। तुमने स्पेस तो है थोड़ा, और आगे आगे आ सकते हैं, बहुत पार्टी आगे आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे। तो बोले कि मैं आज ही देखा, सखात भगवान उपेंद्र आपके सहोदर भ्राता है और कितने प्रसन्न चित्त से यहाँ विराजमान थे आपके सभास्थल में, और आप किस प्रकार उनको, आप पूरे सपरिकर पूरे आपके परिक्रम के साथ किस प्रकार उनका आपने सेवा पूजा कर रहे थे, भगवान प्रसन्न चित्त होकर आपके सेवा का कैसे ग्रहण कर रहे थे, देखने लायक था। तो सचमुच आपको मान गया, आप क्या कहूं, आप मेरे ऊपर भी थोड़ा कृपा दृष्टि कीजिए, आप भगवान के इसी कृपा पात्र है, मैं तो सुना था आज मैंने खुद देखा, और आप जैसे सख्यात देवताओं के राजा है, बड़े बड़े सूर्य चंद्र आदि बड़े बड़े देवता लोकपाल भी आपके आज्ञावर्ती है, आज्ञाकारी है। अरे और क्या कहूं, मेरे जैसे ऋषि मुनि बड़े बड़े देवर्षि महर्षि राजर्षि भी आपके वशवर्ती है, और क्या कहूं, शास्त्र में स्मृति शास्त्र में तो आपको जगदीश्वर करके वर्णना किया गया है, आप ही तो देवताओं को पालते हैं और कम से कम 71 चतुर्युग तक शासन करते हैं, देवताओं के राजा बन करके सब प्रकार के सब निर्णय करते हैं, ये सब करते हैं। तो इसे इंद्र को जो बड़ाई करने लगे, इंद्र सुनकर बोले, सुने थोड़े देर तक, नारद जी तो बोलते चले रहे वीणा बजा करके, आप उनके इंद्र की प्रशंसा गाने लगे, बड़ाई गाने लगे, आप ऐसे हो ऐसे हो। इंद्र थोड़ी देर तो सुने, बोले देवर्षि जी हो क्या गया आज, आज तो बोलते चले जा रहे। तो थोड़ी देर सुनने के बाद इंद्र ने हाथ जोड़ के बोला, हे देवर्षि कृपा करके एक बार सुन तो लीजिए, आप भी ऐसे कहते हैं, आप मुझे भगवान के कृपा पात्र करके मानते हैं। बोले क्यों, बोले हे देवर्षि क्या आपको अविदित है ये सब बात, कैसे आप कह सकते हैं कि मैं भगवान की कृपा के पात्र हूं। बोले क्यों, बोले देखिए मेरे इंद्रपुरी ये अमरावती, यहां हमेशा स्पर्धा असूया भरा पड़ा है, स्पर्धा असूया इसी को कहते हैं, यस कंपटीशन, ईर्षा और कंपटीशन का भावना। बोलते हैं कि स्वर्ग जो प्राप्ति करते हैं, जानते ना कैसे प्राप्ति होते स्वर्ग, पुण्य करके, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा ना, तो जो ज्यादा पुण्य कर्म किया है उनको थोड़ा ज्यादा बड़ा पोस्ट पद भी मिलेगा और भोग सामग्री सुविधा उनको ज्यादा मिलता है, जो थोड़ा डोज कम किया है ना, जो एसी फर्स्ट क्लास बुकिंग किया उसी फर्स्ट क्लास सिंगल बर्थ वाला, और किसी को डबल बर्थ वाला, किसी को 3 टायर, किसी को 2 टायर। बोले इस प्रकार जो जितना पुण्य किया है पुण्य की माप के हिसाब से उनको सुख सुविधा और पदवी पोजीशन इतना मिलता है, वही व्यवस्था रखा है स्वर्ग में। और जो ज्यादा पुण्य कर उच्च में बैठा है और थोड़ी देर नीचे बैठा है, एक दोनों से ये उनको बेखातरी कर रहा है, वो उनके ऊपर ईर्षा कर रहा है, बंदे होगा ना ऑटोमेटिक, बोले ये चल रहा है आपस में भेड़ भीड़ मुठभेड़ी चल रहा है। और दूसरा हमेशा भय बना रहता है, क्या भय, ना कभी पोस्ट चलाना जाए। बोले सबसे ज्यादा तो मेरे भय है, मैं मेरे पोस्ट के लिए दिन रात मर पड़ता हूं, कहीं कोई तपस्या किया मेरे तो नहीं धारा, ये तप कर रहा है गया पता नहीं, मेरे ऊपर तो नजर नहीं किया। हाँ पता है ना, ये इतिहास में पुराण में आप पढ़कर देखेंगे, कहीं भी कोई थोड़ा तपस्या ढंग से किया तो इंद्र को तो वहला हो जाए। भागवत पुराण में है महाराज पृथु तपस्या करने लगे, तपस्या ना यज्ञ करने लगे, तपस्या की बात छोड़ो, यज्ञ करने पर भी उनको संभव नहीं होता, पृथ्वी महाराज ने यज्ञ किए तो सारे देवताओं को इन्वाइट किए थे, सारे देवता आए, सब वरदान दिए पृथ्वी को, इंद्र भी थे उसमें, बैठे थे असेंबली में, सब वहां बैठे थे। जो यज्ञ हुआ एक एक करके यज्ञ सफल होने लगा और उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। जब संकल्प लिए अनुष्ठान में इंद्र बैठे थे, लेकिन उनको इतने जलन हुआ, 100 यज्ञ करेगा, यद्यपि उनको कन्फर्म था कि इंद्र की पोस्ट उनको नहीं चाहिए, वो पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा, उनको इंद्र पद के लिए लालच नहीं है, लेकिन मेरे पोस्ट नहीं लेंगे, लेकिन क्या मेरे कंपटीटर बन जाए। कंपटीटर क्या बोले, अभी तक दुनिया में शतक्रतु मैं हूं, 100 यज्ञ करने वाला के जब कोई बोलते कौन है, इंद्र है, अभी ये भी कर लेगा, बोलेंगे तुम कौन, वो भी हो गया ना दूसरा, बोले अरे दूसरा भी खड़े हो जाएगा मेरे दर्जे पर, ये नहीं। तो इसी के लिए ईर्षा होता, ये ईर्षा कहते हैं, वो ईर्षा है। तो ईर्षा के कारण मन में बड़ा जलन होता था, अब क्या करे, सभी ने सपोर्ट कर रहे, उनका बढ़ावा करे, उनको भी करना पड़ता था। तो जैसे जैसे हो करके 98 यज्ञ पूरा हुआ, 99 होने के बैठा, इंद्र को तो सहन नहीं हुआ, बैठे थे सभा में, सहन नहीं हुआ, तुरंत बाथरूम के बहाने से उठ गए, उठ करके जा करके कहीं से जोगाड़ जंत्र करके मेकअप करके आ गए, इंद्र के पोशाक चेंज कर दिए, आपने देवराज इंद्र ये पोशाक को फेंक करके एक कबाड़ी की, कबाड़ी समझते ना, एक प्रकार के तांत्रिक साधु होते हैं, ऐसे भेष पोशाक पहन करके आए और आ करके घुस करके बोले कबाड़ी साधु कैसे आए, आ करके उनके जो यज्ञ अश्व था उसको चोरी करके, चोरी करने के लिए डुप्लीकेट वेश बना, चोरी करके। अब जब यज्ञ के अश्व की जरूरत पड़ा, देखे घोड़ा नहीं, हाँ हाँ चोरी हो गया, क्या हुआ क्या। और इधर से एक ऋषि आ रहे थे, वो देखे बोले इंद्र तो लगता है इंद्र है, कपड़ा दूसरा पहना हुआ है, पास में जाकर देख लिया, मेकअप क्या है, पहचान लिया इंद्र मेकअप करके जा रहा कर, अरे तू इंद्र, तू घोड़ा लेकर भाग रहा है, तू पृथ्वी का घोड़ा लेकर, वो पीछे पीछे पृथ्वी महाराज उनके बेटे को भेजे, बोले जाओ घोड़ा चोरी होकर पकड़ो, वो गए लाने के लिए। और जब पूछे बोले मैं देखा इंद्र जा रहे हो, इंद्र के नाम लेकर जो ललकार के, इंद्र डर गया, बोले मारपीट ना करेंगे, दो घोड़ा छोड़ दिया, छोड़ देकर बोलो पकड़ा गया, चलो जब हुआ हुआ, लेकिन फिर आया, फिर भी सहन नहीं हुआ, दोबारा ड्रेस चेंज कर फिर आया, परेशान हो गया कि उनकी जब यज्ञ पूरा कर डालेंगे तब तो फिर मेरा मेरे पोस्ट में वो भी शतक्रत हो जाएंगे। इसलिए किसी प्रकार से बारंबार विघ्न करने लगा, अंततः पृथ्वी महाराज इंद्र को मार देने के लिए खड़े हुए, तो सब आकर बोले नहीं नहीं नहीं, आप यज्ञ को संकल्प में दीक्षा लेकर बैठे हैं, ऐसे आप कर मत कीजिए, ऐसे कीजिए। तो फिर ब्रह्मा आदि आकर समझा, बोले क्या पृथ्वी महाराज, आप इंद्र के चक्कर ये बेचारा बहुत पीछे, छोड़ दो ना उसको, क्या आप कुछ हो जाएंगे करने से पड़ी है। तो समझाने पर पृथ्वी महाराज छोड़ दिए यज्ञ करना, 99 तक किए थे और एक रन बाकी था नहीं किए, भगवान विष्णु आ गए प्रसन्न होकर के उनके यज्ञ में। तो इस प्रकार इंद्र कहीं भी, भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे, उनको भी सहन नहीं हुआ, वहां भेज दिया आपने पार्टी डिस्टर्ब करने के लिए उनको, बताओ कोई भी तपस्या करे यज्ञ करे इंद्र को सहन नहीं हुआ, इतने भय है, किसने भय ना, मेरे पुष्ट चला जाए, मेरे पीछे ना पड़ जाए, मेरे शक्ति ना ले ले, बोले इतने भय, बोले इतने भयभीत रहने पर भी नारद जी, क्या आपको पता नहीं कितने बार हमको असुर लोग मार पीट कर भगा दिए, कितने बार भगाए हमको, बेघर होकर घूमते हमने इधर उधर करके, फिर जोड़ अंदर फिर लेते, लेकिन डर रहता है कभी फिर हमारा। बोले आप बोलते अमृत पान किया, रे अमृत की क्या रहा, अभी थोड़ी दिन पहले बलि महाराज ने मार पीट करके धवा करके ऐसे भगा दिया हम लोग को, सब छीन लिया हमसे, हमको अपना सामान ब्रीफकेस भी लेने नहीं दिया, भगा दिया, बोले जाओ। इस प्रकार किया, और क्या कहूं, ये जिनको मेरे सहोदर भ्राता कहते हैं उपेंद्र करके, अगर सचमुच मेरे कल्याण चाहते, मेरे भाई हैं, मेरे भलाई चाहते, तो भलाई चाहते, जो इंद्र जब बलि ने बल पराक्रम से हमको मार पीट के भगा कर छीन लिया, हमारे सारे संपत्ति घरवाड़ी सब छीन लिया, तब तो प्रार्थना किए, हमारे माँ पिता ने तपस्या की, तपस्या करके भगवान को रिझाए, माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने आए, पुत्र बन भाई बन करके आए। अब आ करके माँ ने बोला कि उनके घर वापस दे दो उनको, तो घर वापस दिए, हमारे जो शत्रु हमको जो मार करके भगा कर छीन लिए थे अन्याय से हमारे संपत्ति, उनको युद्ध करके दंड दे करके लाना चाहिए था, नहीं, जा करके हाथ जोड़ करके मांगने लगे, भीख मांगने लगे। वो भी भीख मांगले नहीं दे के फिर चीटिंग करके मांग, चीटिंग करके सरासर मांग करके लाए, उससे तो हमारे देवताओं का नाक कट गया, इज्जत गया। शत्रु के पास में गिड़गिड़ा करके चीटिंग करके मांग कर भीख मांग करके दी, इसी में हम पल खुश रहे। ये जो हमारे इंद्रपद पोस्ट है ना, ये राज्य, वो राज्य तो उनसे मांग करके ला कर दिए वामन देव ने, नहीं तो हमारा क्या अवस्था है, हम पाते पहले उनको लड़ाई करके ला के देते थे, मानते हैं हम देवता हैं बड़े हैं, लेकिन ये भी नहीं कि मांग कर ला के दिए। आपसे पता है आपके घर में सब्जी नहीं बनाया, खाली रोटी बनाया, आपके पड़ोस के घर में सब्जी बना है, स्मेल आ रहा है सब्जी का, बड़ा बड़े सुंदर सुगंधी सब्जी बना, तो बोले ठीक है अब खाली रोटी सूखा क्या खाए, थोड़ा सब्जी मांग ला उनके घर से, मांग कर सब्जी ला करके तृप्ति होगा, बोलते ना एक बार खा लो खत्म हो जाएगा, फिर मन अपने मन है। तो इस प्रकार मांग कर ला कर दिए, और हमारा चीर शत्रु है, शत्रु के वहां मांग कर ला कर जो हम काम कर रहे उसमें हमारा सम्मान है ना, घोर अपमान है, बहुत बड़ी लज्जा की बात है देवताओं के लिए। और दूसरी बात है, आप बोलते हैं पूजा स्वीकार करते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, इतने हम पूरी ताकत लगा करके उनकी सेवा पूजा करते हैं, रो धो करके उनकी सेवा पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर छोड़ते हैं, बोलते जाता हूँ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कृपा करके आप रुकिए यहीं विराजिए, हम आपके सारे व्यवस्था करेंगे, सेवा करेंगे। हमको तो बोलते हैं कि ये इंद्र ऐसा करो, मुझे तो काम में जाऊंगा, अगर आप पूजा वूजा कर रहे हैं ना, आप शिव जी है ब्रह्मा जी उनको पूजा करो ना, मेरे ऑप्शन पर उनको करो, मैं कब आ जाऊंगा, ऐसे करके चले जाते हैं। हम दिख रहा हूँ बताओ, आप हमारा भाई है, हम घर में हम इतने सेवा करें, आप चले जाते हैं, वो बोलते हैं उनको उनको पूजा करो, वो भी तो हमारे गोष्ठी देवता है, आपको पूजा में वो भी हमारे साथ में रहते हैं, उनको पूजा करने के लिए बोलते हैं, ऐसे कहकर चले जाते हैं। पर कहाँ पूजा से, और अगर बोलते हैं कि हमको कृपा करते, अगर मेरे भाई हैं मुझे अगर कृपा करते, मैं क्या कहूँ, ऐसे बदनाम तो अभी तक मैं आँख उठाकर देख खड़ा नहीं हो पा, देख नहीं पाता। बोले क्या, बोले सदियों से ब्रज में ब्रजवासी मेरा सम्मान करते, पूजा करते थे, कई पीढ़ी से करते आ रहे थे, और उन्होंने आए, अभी तक केवल 5-7-6-7 साल की उम्र था उनका, इसे छोटे उम्र में सारे ब्रजवासियों को दिमाग को ऐसे फेर दिए, वो बेचारे मुझे इनवाइट भी किए थे, उन्होंने जो दिवाली के दूसरे दिन इंद्र जगह इंद्र पूजा करते हैं, तो उनका नियम था प्रति हर साल उन्होंने इंद्र को एक होता ना आवाहन, आवाहन संस्थापन सन्निधान सकल पूजा की विधि होता, आवाहन करते हैं, अधिवास इसे कहते हैं, बोले बुलाते हैं, एक कलश स्थापना करते हैं, एक ध्वजा एक झंडा बांस गाड़ के झंडा करते हैं, इंद्र को आवाहन करके रखते हैं, फिर दूसरे दिन कलश स्थापना करके दूसरे दिन फिर पूजा पूजा होता, फिर यज्ञ होता है। बोले आवाहन कर चुके थे, मैं आवाहन किए थे, मेरे सूक्ष्म रूप में गया था, ध्वजा गाड़े थे, कलश स्थापना किए थे, और काल आज अधिवास करते, काल विशेष पूजा होगा, यज्ञ होगा, बढ़िया बढ़िया पकवान महीना दिन से के सब खिलाएंगे, ये सब काल का था, मैं ऑलरेडी बैठा था, और उसी दिन शाम को क्या मीटिंग कराए, मैं बैठे के बैठी रह गया, सारे पकवान सब कुछ, भाई भाई आधा ग्लास पानी भी दे दिए होते, पानी भी नहीं पूछे बेटा, आप बोलो कृपा, बोले आपको अपने बहुत सम्मान करते होंगे कोई आपके सेवक, आपको बोला प्रभु जी आइए बैठिए प्रसाद लेना, अब बैठे आसन लगा दिए, पानी लगा दिए, प्लेट लगा दिए, और अब रोटी लाता हूँ, अब रोटी लाता हूँ, अगर बैठे थाली बैठा है वो कहीं चले गए, रोटी लेकर चले गए क्या, बैठे रोटी बनाकर दूसरे को खिलाने के चले गए, बोले पहाड़ को पूजने चले गए, मैं बैठा हूँ, बैठा ही बैठा रह गया, वो तो चले गए पहाड़ को जब पूजा करने, अब तो मेरा क्रोध भी हुआ, बड़ा क्रोध हुआ भाई, सरासर अपमान किया मुझे, ये गाय चराने वालों को इतने गर्व अहंकार हो गया, मुझे बुला करके पूछे ही नहीं, जाकर के पहाड़ को पूछने लगे। मैं गुस्से में चुरचुर होकर गर्भ में एक्शन लेने के लिए गया, पूरी पावर लगा दी, बोलते कोई कसर नहीं छोड़ा मैंने, मेरा पास इतने था वज्र वर्षा वो तो किया ही किया, और भी दो चार फ्रेंड को बुलाया, अग्निदेव को वायुदेव को बुलाया, बोला चलो मेरे साथ में एक्शन लेते, वो भी आए। अब जानते हैं इंद्र के पास कुछ इमरजेंसी स्टॉक होता है, जब जब प्रलय होता ना, प्रलय में कुछ पानी रहता है, कि प्रलय के समय बारिश किया जाता है, वो संवर्त तक में कहते हैं, वो प्रलय के समय उसका बारिश होता है, इतने मोटे हस्ति शुंड की तरह पानी टपकता है, वो पूरा तीन लोग डूब जाता है इतने पानी होता है। तो जो इमरजेंसी स्टॉक वाटर था, इमरजेंसी टाँकी जो था स्टॉक पानी, अरे उसको रेंची मंगा कर उसका हौस पाइप खोल डाला इंद्र ने, हाँ इमरजेंसी टंकी भी खोल डाला, उनके पास इतना था उसको तो डाला ही डाला, उसको भी खोल कर डाल दिया, पूरी वीकेंड तक जो था ताकत लगा दिया मैंने, पूरा इतने कसर से लगाया, पूरा ब्रज को तहस नहस कर देने के लिए। अरे जाकर देखता हूं तो क्या भाई, भले एक धूल भी गीला होता, एक पत्ता भी गीला नहीं हुआ, धूल उड़ रहा था। बोला मेरा नाक कट गया, उनके सामने क्या करूं, ऐसे वज्जित कर दिए मुझे। आप बोलते हैं कि मैं कृपा पात्र हूं, क्या कहूं, एक से एक ऐसे ऐसे। आप तो नाराज जी सुन सुन करके बोले, ये बोले मैं क्या बताऊं, आपको तो कुछ छिपी नहीं है, कोई चीज नहीं कि आपको विदित नहीं है, कृपा कर थोड़ा और आगे आ जाइए, बोले आपको विदित नहीं, एक से एक जो मुझे इस प्रकार मेरे से व्यवहार उनका है, आप कैसे कहते हैं मेरे पर कृपा। अरे कृपा क्या, कृपा पात्र तो बहुत दूर की बात है, कृपा पात्र का शब्द कहने के लिए लायक नहीं मैंने, इस शब्द कहने के लायक आप कैसे कहते। तो इसलिए कभी मत सोचिए जहां इतने प्रकार के असूया, बोले वृतासुर आया, वृतासुर आया आ करके इतने हमला किए कि हम जा करके बहुत नहुरा के सारे देवता ऋषि मिल करके प्रार्थना किए, हम बोले सर देखिए बहुत परेशान कर रहे हैं, प्लीज प्लीज भगवान, बोले हाँ ठीक बता तुम करो, मुझे लगा दी, बोले तुम जाकर मारो, अरे मारो करके हम इतने तपस्या करके खुद कुछ नहीं, मुझे बोले जाकर इसे काम करने बता दिया और मैं तो मर गया। बोले ब्रह्म हत्या के दोष है, पाप है, स्पर्धा है, भय है, बोले कैसे यह भक्ति तो प्रसन्न नहीं, कैसे कृपा पात्र कहते। तो इसको कहते हैं कि जब इंद्र के ऊपर बोलते हैं ब्रह्महत्या दोष यहाँ है, ब्रह्महत्या दोष कैसा, बोलते हैं कि एक बार इंद्र ने अपने मीटिंग हॉल में अपने अर्धांगिनी सची के साथ अपने इंद्रासन पर बैठे थे, और मरुदगण आदि अन्य अन्य देवता सब उनको स्तुति कर रहे थे और पार्टी चल रहा था। इस समय में देवगुरु बृहस्पति पधारे, इंद्र ने देखा गुरुजी आ रहे, लेकिन इतने मस्ती में थे, इतने प्रकार के पार्टी चलाते थे कि देख कर भी खड़े नहीं, खड़े होकर उनको आगवानी नहीं की, बोले आएंगे गुरु जी बैठ जाएंगे, उनकी सीट तो है ही, उसमें खड़े होकर उनको सम्मान नहीं किए। और गुरु जी देखे मैं क्या कहूँ कि उठकर खड़ा ही नहीं होता, तो बृहस्पति जी इंसल्ट फील किए, अफेंडेड फील किए, अफेंड फील करके तो उन्होंने आए नहीं वापस चल के। तो इंद्र को लगा गुरुजी आ रहे थे, आए क्यों नहीं, किसी वजह जब देखो गुरुजी कहाँ गए, आओ जाके देखा गुरुजी है ही नहीं, तो फोन किया उनके घर को, बोले मैडम कहाँ गए, गुरुजी कहा वो है ही नहीं, वो तो गए मीटिंग में, यहाँ नहीं आया, कहाँ पता लगाए गए ही नहीं, वो गायब हो गए, गायब हो गए। इंद्र बड़ा सीरियस हो गया, बोला किसी को पता ना चल जाए कि गुरुजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, गुरुजी की अपमान में कर दिया, ये बात किसी को बताना चलना चाहिए, तो बड़े गड़बड़ बात है। बहुत छिपाने के लिए कोशिश किया, लेकिन असुरों का नेटवर्क इतने पावरफुल है, पता नहीं कौन सा वाईफाई लगाए थे उन्होंने, वो पकड़ लिया, उन्हें पता चल गया, बलि एंड पार्टी पता चल गया कि इंद्र का गुरु के साथ अनबनी हुआ है। और शुक्राचार्य बात के शुक्राचार्य बोले बलि ना क्या ए टाइम है, आप उनको लेकर के आए, आ करके चढ़ाव के चढ़ा के तो ऐसे मार मारे बेचारे भाग भाग चले सब भाग गए जा करके ब्रह्मा जी के पास गए दौड़ करके रो रहा करके। बोले देखिए पितामह आप ही ने नियम किए उनको उनको असुर लोग दिए हैं हमको देव लोग दिए हैं देख ली देखो आगे जबरदस्ती छीन लिया हम कुछ भगा दें क्या करें कुछ के? रोज होकर ब्रह्मा जी के पास है और ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूँ ये जो आपने किए ये सारे कारण है आप गुरु अवमानना किए गुरु अवमानना के कारण आपके दुर्दशा भोग रहे हैं ना फिर क्या उपाय तो बताओ भोग तो रहे मान रहे हम तो गड़बड़ी किए गलती किए अब क्या करें ना जब तक कोई गुरु ना हो गुरु कृपा के बिना आपके ये चीज फिर वापस नहीं आ सकता ना गुरु गुरु जी मिल नहीं रहे ढूंढ ढूंढ के परेशानी हो कहाँ छिप गए मिल नहीं रहे सारे फोन बंद है सब कुछ बंद है उनका मिल नहीं रहे पता नहीं फिर क्या करे तो ब्रह्मा जी ने बोले ऐसा करो कुछ गुरु तो एक किसी को बनाना पड़ेगा बोले किसको बनाए तो ब्रह्मा जी ने बोले देखो जाओ आपके आदित्य मंडल में एक देवता है जिनका नाम है त्वष्टा उनका एक बेटा है जिसका नाम है विश्वरूप बड़े सदाचारी ब्राह्मण है वेदज्ञ हैं बहुत अच्छा शास्त्र पाठ किया है और नारायण मंत्र को सिद्ध किया है बहुत सदाचारी ब्राह्मण है विश्वरूप उनको अपने गुरु को वर्ण करो विश्वरूप त्वष्टा का बेटा ना वही तो हमारे भतीजा लगेगा ना उसको जाओ उसको गुरु रूप में ब्राह्मण है उनको गुरु रूप में ब्राह्मण करो गुरु कृपा में कुछ आपके सफलता प्राप्त होगा नहीं सही से दुखी रहे तो जैसे ब्रह्मा जी कहे तो सारे इंद्र और बड़े बड़े जो सीनियर डेमिगढ़ थे सब सीधा गए विश्वरूप जहाँ बैठ करके अपने साधना कर रहे थे सीधा वहाँ गए जा करके फटाफट दंडवत प्रणाम किए उनकी प्रणाम किए तो ईश्वर कुटिपति ये तो मेरे सब अंकल हैं मेरे चाचा काका ताऊ ये क्या सब यहाँ कर क्योंकि उनके पिताजी त्वष्टा देवता थे उनको और वो सीनियर देवता सब इंद्र आदि लोकपाल बड़े बड़े राजा सब आए बोले चाचा जी ताता का अब कैसे के ना अभी ये सब रिलेशन छोड़ो अब कृपा करके हमारा पर कृपा करो हमारे गुरु बन जाओ मैं कैसे गुरु बनवाऊंगा अरे छोड़ो ये सब बात वो चलता है अभी गुरु बन जाए ऐसे परिस्थिति में ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने बोले बहुत समझाए वो ऐसे गिड़गिड़ा के रोए धोए तो बोले कि आप लोग मुझसे बड़े बड़े मेरे सीनियर है सब आके बोलते हैं यद्यपि पुरोहित कर्म करना बहुत तुच्छ कर्म है मुझे पसंद नहीं पुरोहित के काम करना लेकिन फिर भी आपके भलाई के लिए आप लोग सब चाहते हैं तो फिर भी मैंने प्रयास करूँगा तो विश्वरूप ने न चाहते हुए इंद्र आदि के रिक्वेस्ट के कारण उन्होंने उनके पुरोहित कर्म स्वीकार किया और इंद्र को बैठा करके उनको वैष्णवी विद्या के शिक्षा दिया नारायण कवच सिखाया नारायण कवच के सहायता से इंद्र ने इतने बलशाली हो गए तो फिर युद्ध करके बलि को परास्त करके सारे राज्य फिर वापस गए उन्हीं की कृपा से और विश्वरूप का तीन सर था 300% था इस प्रकार का एक सर में तो सोमरस पीता था एक मुंह से दूसरे मुंह से अमृत पीता था तीसरे मुंह से अन्न खाता था तो तीन मुंह से तीन प्रकार के डाइट खाता था और यज्ञ करता था बड़ा सिद्ध ब्राह्मण था तो गड़बड़ी वो भी था क्या कि उनके पिता तो देवता थे त्वष्टा आदित्य मंडली में उनका माँ थी असुर कुल की उनका शादी वहां पर हुआ था ये ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली से हुआ था तो अब क्या है तो एक ही परिवार के देवदानव तो वहां उनका शादी हुआ था तो इसीलिए इंद्र के पुरोहित ने स्वीकार किया था इंद्र सब घी फी सप्लाई सब इंद्र दे रहा यज्ञ के वो जब सब बैठे देवता उन्होंने यज्ञ कर रहे थे पूरा वॉल्यूम फुल देकर के साउंड सिस्टम में ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्रये इदं नमः ऐसे कहकर इंद्र को अग्नि को वरुण को सब दे रहा था जब देखा तो वॉल्यूम लो करके असुर को भी देता था इसको पता ना चले क्योंकि मातृ स्नेह था माँ असुर कुल के था तो माँ को प्रसन्न करने के लिए मामा आदि होंगे ना माँ के भाई अगर तो सब असुर कुल हैं तो उनके लिए भी दे देता था तो उसको किसने देखा अरे ये चुप किसे हुआ हमें देता जाकर इंद्र को फोड़ दिया बस सर पता है अरे आपको तो पता नहीं ऐसे ऐसे चल रहा है वो जो बोलने वाले होते हैं ना वो तिल को ताल करते हैं तिल को ताल समझते हैं हाँ इन लार्ज करके बताते हैं ऐसे बढ़िया से डोज देकर बताएंगे कि वो तो बिल्कुल अब इंद्र तो ताऊगिर बोला अब देखना जाकर के, तो इंद्र उस दिन आकर बैठा और जगह कर रहा था, वो तो डेली कर रहा था, बोला सुना नहीं पड़ेगा चुप से करके। जैसे इंद्र ने तो पर्टिकुलर उसको देखना चाह रहा था, जैसे देख लिया कि चुप से आवाज करके हमको दिया और फिर असुर बुद्धि रहे चुप चुप कर रहा होता। इंद्र देख कर तो प्रचंड क्रोधित हो, क्रोध के मारे जा करके तुरंत कुछ सोच विचार नहीं किया, गुस्से में जाकर सीधा तलवार निकाला, तीनों सर को काट दिया। बिहेडेड यज्ञ पे बैठा था, आपने पुरोहित गुरु जिनके कृपा से उनके घरवाड़ी वापस मिला उन्हीं को पूजा मंडप पर तीनों गला काट करके रख ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। तो उनके पिता जिसे पता चला उनके बेटे को ऐसे पुरोहित करके कर्म के और गला काट दिए, तो पिताजी गुस्से हुए, इंद्र को खूब गाली दिए बदला लेने के लिए। हो यज्ञ के भी देवता है ब्राह्मण है, यज्ञ का प्रोजेक्ट था इंद्र मारण यज्ञ, क्या ये यज्ञ के ऐसे यज्ञ करूंगा कि असुर सृष्टि कर इंद्र को मार डालूंगा। जो आहुति दे रहे थे मंत्र इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ये उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो गया, यही तो मंत्र है, इसलिए मंत्र के प्रति बहुत होशियार, थोड़ा सा उच्चारण कहीं मिस्टेक हो गया रिएक्शन हो जाए, वो उच्चारण से थोड़ा गड़बड़ हो गया, इंद्र क्या मरेगा उनके बेटा ही मर गया, जिसको प्रकट किए थे वृत्रासुर इंद्र के द्वारा मर गया, उल्टा काम हो गया। तो वृत्रासुर को प्रकट किए थे त्वष्टा ने, तो वृत्रासुर ब्राह्मण था, ब्राह्मण के पुत्र हुआ त्वष्टा के पुत्र, तो इतने वृत्रासुर जब प्रकट हुआ अग्नि से, प्रकट होते ही बोले एवरी डे उनका वृद्धि कैसे होता था, बोले हर तरफ से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड फ्रंट साइड बैक साइड चार चार हाथ, एवरी डे चार हाथ इधर चार हाथ पीछे चार हाथ इधर चार हाथ इधर बढ़ जाएगा। एवरी डे चार चार हाथ जब बढ़ेगा मतलब डेढ़ डेढ़ मीटर लंबा चौड़ा में आगे पीछे चारों तरफ बढ़ जाएगा, एवरी डे बढ़ने लगा तो साल भर में कितने बड़ा हो जाएगा, साल भर क्या छः महीने में कितने दिन हो जाएगा। बोले देखते देखते विशाल पर्वताकार शरीर हो गया, इसी विशाल वृत्रासुर हुआ और सूढ़ लेकर मुंह खोलकर जब आने लगा हम सब डर डर कांपने लगे, सारे देवताओं इकट्ठा हो गए, सारे ऋषि महर्षि इकट्ठा, बोली तो खा जाएगा इतनी विशाल दैत्य हुआ, अब क्या करे, सब मिल करके जितने अस्त्र शस्त्र सबके पास था मारे, बोले एक डोजी मार देंगे हाई डोजी मारे, तो वृत्रासुर ने सारे को सारे अस्त्र देवताओं को लेकर के मुख में दांत भी नहीं लगा टक्कर खा गया। अरे बाप रे बाप, समुचे सबके अस्त्र शस्त्र को ऐसे खा लिया जैसे कोई चॉकलेट खाए, अब क्या लड़ाई करेंगे, बोले मर गए हमको नहीं खाया बड़ी बात है, हमको तो ऐसे खा जाता है हमको नहीं खा रहा है बड़ी कृपा किया। आप तो रो धो करके डरते मारे कांपते हुए आ करके इतने भयभीत होकर भगवान को प्रार्थना किए, सारे देवता मिल करके ऐसी प्रार्थना की, ऐसी प्रार्थना किए कि भगवान ऑन द स्पॉट प्रकट हुए, भगवान को प्रकट करा दी, इतने बिकल होकर के रोए सारे देवता मिल करके, मर गए प्लीज से बचाओ बचाओ करके ऐसे। तो भगवान साक्षात प्रकट हुए, प्रकट होकर बोले क्या नाम सर, ये पुत्र खा जाएगा हम कुछ करो उनको। सब लोग मिल करके उनको प्रार्थना किए, तो भगवान ने बोले अच्छा कोई बात नहीं, मुझे पता है वृत्रासुर को डर है ना, ना ऐसा करो मैं आपको बताता हूँ वृत्र मारण उपाय बताता हूँ, मैं आपको ऐसे उपाय बताता हूँ जिससे वृत्र मर जाएगा बता। इंद्र के मुंह सूख गया, हम सोचते थे सर आप ही मार देंगे उसको, आप नहीं मारेंगे, नहीं मैं नहीं मारेंगे, मारोगे आप, हम आपके सामने कैसे जाएंगे। बोले मैं बताता ना ऐसे नहीं मरेगा, तो महाबली है मैं उपाय बताता हूँ जैसे मरेगा, किसी उपाय से मरेगा बताता हूँ ना, क्या क्या उपाय ना देखो चुपचाप बताते किसको नहीं बताना, बहुत सीरियस मैटर में आपको केवल बताता हूँ, वृत्रासुर जो इतनी बड़ी भयानक वीर ही थे विशाल वो मरे का उपाय बताता हूँ, क्या ना आपको जाना भूलोक में, यहाँ के ऋषि तपस्या तपस्वी है जिसका नाम है दधीची, उसके पास जाना, दधीची के साथ उनका भी अच्छा रिलेशन था इंद्र का मैं बताऊँगा अभी, तो उनके पास जाना और उनके अस्थि को लेकर आना, अस्थि समझते ना उनका हड्डी, उनके हड्डी को लेकर आना, वो आकर के विश्वकर्मा के पास आना, मैं ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ, डिजाइन भी दूंगा, उस डिजाइन में उन्होंने अपना लेद में वो बनाएगा, वज्र बनाएगा। डायग्राम मैं देता हूँ यहाँ से, उनका लेद मशीन है, उसमें हड्डी को डाल करके बना देगा वज्र उसका हड्डी से। और ये सहस्र आर विशिष्ट जो अरे वाला वज्र बनाएगा, उस वज्र में मैं अपने शक्ति भी इन्वेस्ट कर दूंगा और इस वज्र से मृत्यु मरेगा, इससे मरेगा, बाकी कोई मर नहीं सकता, उपाय नहीं। तो जिससे भगवान ने सारे उपाय खोल के बता दिए, सब जनता तो खुश तो हो गए, लेकिन खुश हो गए रो, सारे टैक्स हमको करना पड़ेगा, भगवान तो कुछ कहीं निकल बता ही दिए। देखिए इतने रोना धोना किए, भगवान प्रकट भी हुए, प्रकट हो लेकर नहीं बोलते हैं कि आपको करना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला बताता हूँ करना आपको, तो भगवान पता करके चले दे। तब इंदिरा आदि बोले कैसे जाए, वो मना कर रहे थे, बोले दादी जी के पास कैसे जाए, सर और कोई बात करो उनके पास नहीं जाएंगे, नहीं 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 जाना तो उनके पास पड़ेगा। क्यों दादी के पास जाना नहीं चाहते थे इंदिरा? कि हुआ था क्या, एक आध साल पहले इस घटना का, एक आध साल पहले देवलोक में एक दो भाई है फिजिशियन, MBBS है, दो डॉक्टर MBBS है, जानते ना कौन है वो, अश्विनी कुमार दो भाई है, वो बेचारे MBBS, बाकी कोई नहीं, केवल दो ही है, क्योंकि यहाँ कोई बीमारी होते नहीं, तो चले गए नहीं क्लिनिक, हॉस्पिटल कोई जरूरत नहीं, वो तो कोई बीमार कोई पड़ेंगे नहीं, सवाल ही नहीं कोई बीमार हो तो कौन डॉक्टर पास हो, कोई बीमारी नहीं पड़ेगी डॉक्टर पास कौन पूछे। तो उन बेचारों ने बेमतलब का MBBS करके गए, तुमको पूछते भी नहीं, और उनको इतने बेखातिर कर रहे हैं, बोले हटो यहाँ बैठो करके, उनके यज्ञ भाग नहीं देते हैं, अपने बैठते लाइन में नहीं बैठाते, बोले नहीं तुम यहाँ बैठो, हमारे साथ नहीं बैठ सके इधर बैठो। वो बड़े छोटे दृष्टि से देखने, इसी दृष्टि से, और वो देवता होकर भी केवल डॉक्टरी पढ़े करके उनको इतने अपमानित कर रहे हैं, तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था। बोले कि बोले अगर आप IDC कोर्स करके आएंगे तब जाकर, दीक्षा लेने के बाद में तब जाकर साथ में बैठ सकते, ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है तो उसमें नहीं बैठाएंगे, तो MBBS पढ़ गया, हट गया, ऐसे उनको अपमानित कर रहे थे। तो उन बेचारों को चाह रहे थे कि हम ये कर ले कोर्स कंप्लीट, अभी कम से कम वही आपके समान देव दीक्षा ले लें, ब्रह्म विद्या सीख लें, तो देवताओं के लाइन में बैठ के पास में तो बैठ कर थोड़ा खाना पीना करेंगे। लेकिन इंद्र ने और किसी को, जितने टीचर थे सबको वार्निंग दी, कोई इसको नहीं पढ़ा, नहीं सिखा सकता, ये नहीं रिजेक्ट है, अब कोई पढ़ाते नहीं थे, बेचारा घूम कर कोई जगह में उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था। तो परेशान होकर के अश्विनी कुमार नीचे आए धरती पर, और जो दधीचि ऋषि थे वो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे, उनको ब्रह्म विद्या ज्ञाता थे, वो पता लगा लिए, गूगल में सर्च मारे होंगे कि यहाँ भी है इंस्टीट्यूट, तो पता लगा कर यहाँ पहुँच गए सीधा। आकर दधीचि के पास खूब दोनों भाई आकर के जब प्रसन्न, इतने स्तुति किए, इतने उनकी प्रशंसा गान किए, दधीचि ऋषि बेचारे ब्राह्मण थे, बोले क्या है रखते हैं देवता, हाँ हैं हम ऐसे हैं, फिजिशियन है लेकिन ऐसे ऐसे हमारा पति दुर्व्यवहार हो रहा है ऐसे कर, अब पता चला आप ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं, प्लीज़ हमको पढ़ा दीजिए प्लीज़ की बात है। तो बहुत जब उनको बोले तो दधीचि ऋषि बोले देखो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, आप कोई बात नहीं आप ऐसे करते पढ़ा दूंगा पढ़ा देंगे, तो ये डेट दिया उनको, इस डेट में आ जाना, डेट दे दी, बड़े खुश हो गए, टाइम हो गया, कन्फर्म हो गया कि अभी आएंगे, हमारा कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। तो खुशी होकर चले गए, इंद्र को कैसे खबर मिल गया कि उन्होंने तो वहाँ जाकर के ब्रह्म विद्या पढ़ने की प्रयास करें, तो इंद्र गुस्से में आया, दधीचि के पास आए इंद्र, आकर के दधीचि देखे इंद्र पहुँच गए, आके धमकी दिए, बोले दधीचि जी ना देवराज, ना देवराज, देवराज क्या, मैंने सुना हूँ कि आपने वो उन दोनों आ रहे हैं, उन दोनों को आप पढ़ाना जा रहे हैं, ये कोर्स पढ़ाएंगे अपने, आए तो थे, मैंने उनको टाइम दिया हूँ, मैं उनको वचन दिया हूँ पढ़ा दूंगा, अरे नहीं ये मेरे आज्ञा है, उनको नहीं पढ़ा, बोला लेकिन आप पहले नहीं बताया, मैं तो उनको हामी भर दिया हूँ, बोले मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप मेरे अवज्ञा करेंगे पढ़ाएंगे तो आपका गला काट दूंगा, सीधा मर्डर कर दूंगा आपको, खबरदार, यही से धमकी दे करके इंद्र चले गए। वो बेचारा ब्राह्मण डर गए, बाप रे बाप रे, तो इंद्र है ये तो कुछ भी कर सकता, अब सावधान हो गए, और जिस अब काम पूरा हो गया, जो डेट के अनुसार आके सिंहपुरा पहुँचे, ड्यू डेट में आके पहुँचे, बोले जी पढ़ाना, अरे बाप रे बाप, तुम्हारा राजा आया था आकर के इसे धमकी दिया मुझे, मार देगा बोल कर गया है, वो धमकी दे कर गया, जैसे बोले कि बोले मार देगा, हाँ बोला गला काट दूंगा आकर के, तो दोनों अश्विनी कुमार बोले गुरु जी वो गला काटेंगे ना, पहले हम काट देते हैं। बोले कैसे? बोले यही तो हमारे अविद्या का, तो हमको काम नहीं लगता है, हम इतने सर्जन है, इतने ए क्लास का सर्जन है, ये सब काम है, लेकिन कोई काम लगता नहीं आपको, हम ऐसे करते हैं, हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, पहले आपके गला हम काट लेते हैं। बोले फिर पढ़ेंगे कैसे? मैं पढ़ाऊँ ना, हम व्यवस्था कर ना, सुनिए तो सही ना, क्या ना, हम आपका गला काट के फ्रिज में रख देंगे, सर काट के फ्रिज में रख देंगे, और दूसरे किसी के पशु का गला काट कर ला के जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, वो जिसका गला काटेंगे उसके धड़ को और आपके सर को दोनों फ्रिज में रख देंगे, रहेगा जब तक आप कोर्स चलेगा तब तक फ्रिज में रहेगा, आप पढ़ाएंगे उसे, हम जोड़ देंगे उनको, ऐसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे जोड़ करेंगे, ऐसे सर्जन हम लोग हैं, ऐसे स्पॉटलेस सर्जरी करेंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे। जैसे पढ़ाएंगे कोर्स, इंद्र को पता चलेगा, इंद्र आएगा, इंद्र आकर गला काट देगा, जैसे काट देगा हम फिर उसको लेकर उसे जोड़ा देंगे, आपका गला आप जोड़ देंगे। बोले देखिए हम करते हैं, यही तो हमारा काम है, हम कुछ काम मिलता नहीं प्रैक्टिकल, हम ही करते हैं। तो पहले गुरुजी को पढ़ने से पहले दक्षिणा दिए, उनके गला काटे, गुरुजी के गला काट कर लेके फ्रिज में रख दिए, और ढूंढे किसके लगे कि घोड़ा सोया हुआ था, तो घोड़े के गला काट दिए, घोड़े के गला काट कर उसके सर को ला कर गुरुजी के गले में जोड़ दिए, और घोड़े सर में गुरुजी बैठ गए, और घोड़े के जो धड़ था उसको और उनको रख दिए सेफ में, और फिर कोर्स पढ़ाना शुरू किया। तो घोड़े के मुख से दधीचि ने उनको पढ़ाए, ब्रह्म विद्या के पाठ पढ़ाए। तो इसीलिए आज भी ब्रह्म विद्या के एक नाम है अश्वशिरा ज्ञान, आप वेद में पढ़ेंगे उनका नाम है क्या, अश्वशिरा विद्या, क्योंकि अश्व के सिर से वो सिखाया गया था, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े के सिर में वो सिखाए थे ब्रह्म विद्या पढ़ाए, अश्वशिरा ज्ञान को, तो इसमें पढ़ाया उनको। आप जब पढ़ लिए पता चला इंद्र को, तो हो गया, उनका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और सर्टिफिकेट जितने स्नातक उत्सव था, इंद्र को पता चला, दौड़ करके आया, आ करके देखा तो सर्टिफाइड हो रहे, आ करके इंद्र देखा भी नहीं, बोले पहले मैं देख कर गया था, वो तो दधीचि के तो इसी था, चश्मा लगाए थे इसी थे, ये घोड़े के मुंह कैसे, ये भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं, आकर सीधा तल्ला रखा, खचाक उड़ा दिया गला, उनको तो गला काटने में अवस्था अभ्यास है पहले से, गुरुजी का काटा, ब्राह्मण के काट दिया, दधीचि ऋषि का गला काट, और गला क्या है, तो घोड़ा का सर था, घोड़ा का सर जैसे कट गया, उनके स्टूडेंट तो बैठे ही हुए थे, जैसे काट दे घोड़ा का सर लेकर गए, घोड़ा का जो उसका पड़ा हुआ था भीज में, उसको निकाल कर उसे जोड़ कर घोड़ा को विदा कर दे, बोल जाओ, और उनके सर लेकर उनको जोड़ कर फिट, जैसे दधीचि जैसे, अब बाद में फोटो खींच के व्हाट्सएप से भेज दिए उनके पास, इंद्र के पास, बोले इंद्र ने देख रहा के बोला मरे करतूत, बोले देखो ये भी क्या, मैं गला काट करके आया, फिर भी जी गए उन्होंने, अब क्या करूं। और आप ऐसे इंद्र के साथ जो झगड़ा हुआ था, जिसके गला काटे थे, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के हड्डी मांग करके लाओ, उसी में वज्र बनेगा तो रुद्र मरेगा। तो इसीलिए इंद्र बोल रहा था सारा साल और किसी के पास है, लेकिन भगवान बोले उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो इंद्र ने वैष्णव बोला, बोला प्रभु ना क्या ना, उनके साथ हमारा थोड़ा अनबनी है, रिलेशन खराब है, इसलिए वो देगा ही नहीं, सर प्लीज वो देगा ही नहीं, ना नहीं उनका चेला है ना आपके देवता, दो है ना अश्विनी कुमार आपके देवता, बोले उनके साथ ही बनता नहीं, लेकिन अभी तो बनाना पड़ेगा, बोले काम है इसलिए बनाना पड़ेगा, आप क्या करें, सचमुच तो मृत्यु भय है। तो फिर अश्विनी कुमार को जा करके दोस्ती की, उनके साथ जाकर हाथ मिला, बोले भाई चलो, तो अश्विनी कुमार को साथ में लेकर गए, तो दधीचि राजी हो गए, बोले मेरे स्टूडेंट है, जा करके फिर इंद्र आदि सब साथ में सामने जा करके आगे जा करके बोले बहुत दंडवत प्रणाम किए दधीचि ऋषि के आश्रम में करके जा करके बोले क्या ना सर, कृपा कीजिए, थोड़ा मदद कीजिए सर, बहुत मदद कीजिए, बहुत बहुत डर है, बहुत परेशानी में, बहुत प्लीज प्लीज हो, बोले बताओ तो सही क्या करूँ ना सर, बहुत कृपा करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा सर, ना बताओ क्या मदद करूँ सर, आप मर जाइए। अब मरेंगे नहीं तो हड्डी कैसे मिलेगा, जिन्हें हड्डी लेकर जाना था, बिना मारे कैसे हड्डी ले सकते, जिंदा तो ही तो जाकर बोल लेते,
हम आपके हड्डी में वज्र बनाएंगे तो इसलिए आपको मरना पड़ेगा, आप मरेंगे तो आप चमड़ा छील करके फिर हड्डी लेकर जाएंगे उसमें, तो ही कृपा कीजिए, कृपा करिए, बहुत मदद की, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प, क्या हेल्प करूं, यही से बेशर्म तो हो सकता, यही से धरती में हमारे ईस्ट दिल्ली में कोई होंगे ऐसा जाकर किसी मांगेगा सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये हेल्प मी। लेकिन फिर भी स्वार्थ के साधन करने के लिए, भय से बचने के लिए मतलब वो जाकर किए, वो किए तो दधीचि ऋषि ने बोले अरे निर्लज्ज देवता इंद्र, तुम खुद मरने के भय से मेरे पास आया, वृत्रासुर को भय से मर जाएगा इसलिए भय आया, आकर मुझे मरने के लिए बोल रहा है, कौन ऐसा प्राणी है जिसका शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, सबका लगाव है अपने देह के प्रति, तुम अपने देह को बचाने के लिए मेरे पास आ गए तो मेरे पास देह के प्रति लगाव नहीं है क्या, इससे निर्लज्ज है आकर यही बात मांग रहा है मुझे, मैं मर जाऊं। इंद्र बोला मुझे पता था आए बढ़ा देगा नहीं, वो बेचारे गया वापस जाकर बोला सर मैं मना कर रहा था, अब देगा नहीं, वैसे गुस्सा कर रहा है गाली दे, बोले नहीं जाओ दोबारा जाओ, बोले इसे बोल रहा है देगा, फिर दोबारा आए गिड़गिड़ाया आकर इतने बेशर्म है, फिर आकर मगर दर्जी बोले चलो मरना तो एक ना एक दिन है ही है, मृत्यु तो निश्चित है, पता नहीं कैसे मरेंगे, किस प्रकार मरेंगे, क्या काम मरेंगे, कोई फेंक देंगे, जला देंगे, खा जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मरना ही है, अगर ऐसे मृत्यु सारे देवता ऋषि ब्राह्मण समाज आकर के गिड़गिड़ा रहे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप लोग का इतने बड़े कल्याण होगा भलाई होगा तो ये मरने से श्रेष्ठ मरना और क्या हो सकता है, तो चिंता मत कर मैं अवश्य मरता हूँ और आप मेरे हड्डी लेकर के बनाओ, खुश हो गए, स्वयं अपने जान बूझ करके योग साधना से अपने शरीर त्याग, तो उनके हड्डी को लेकर के उन्हें बना के जाए, तो इसे करके तो इसे कहते हैं वृत्रासुर को जाकर के जो मरने के लिए कितने परेशानी किए थे भगवान नहीं बोलते, तो इस प्रकार कई कई प्रकार से जब देवताओं को विपत्ति आता है इस प्रकार भगवान डायरेक्ट हेल्प करते नहीं, करते हैं इनडायरेक्टली, था मन कहा था इसे कर लो, इसे बोले समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं के परिषद, वो बोले कि असुर से जाकर संधि करो, उनसे जाकर संधि किए, बोले हम नहीं चाहते थे, हमने चीर शत्रु है उनके साथ कैसे दोस्ती करो, दोस्ती करना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो कैसी कृपा मानते हैं, तो इसे किसी प्रकार से प्रूव नहीं कर सकते कि भगवान का हमारा कृपा है, कृपा क्या, कृपा के शब्द ही पदवाच्य नहीं होते हमारे प्रति, इतने हमारा दशा खराब। तो हे नारद जी अगर सचमुच आप ये अन्वेषण में लगे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन भगवान के प्रिय है, कौन भगवान के कृपा पात्र, तो मैं बताता हूँ मेरे विचार में आपके पूज्य पिताश्री, आप जिनके ज्येष्ठ पुत्र है ना, आप जो पूज्य पिताश्री जी ब्रह्मा जी, वो हैं भगवान के कृपा, वो साक्षात लोक पितामह है, सृष्टि करता है, जिनके चतुर्मुख से चार वेद निकलता है, अरे क्या कहूँ, जो साक्षात पद्मनाभ स्वयं उनके पुत्र है, साक्षात भगवान के बेटे हैं, भगवान के डायरेक्ट बेटे हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके कर्मचारी हैं, सब कुछ उनके, उनसे बढ़कर कौन कृपा पात्र हो, जिनको पुत्र करके माने, जिनको पाठ पढ़ाए, जिनको सब कुछ किए, तो वो तो कृपा पात्र है, वो सृष्टि करता है, वो साक्षात भगवान महापुरुष रूप में गर्भसाई विष्णु के रूप में उनके ब्रह्मलोक में बैठ कर पूजा स्वीकार कर रहे हैं, वो आशीर्वाद कर रहे हैं, उनके वरदान कर रहे हैं, इसे करें ऐसे ब्रह्मा जी के गुणगान किए, इंद्र के मुख से ब्रह्मा जी के गुणगान को सुन करके अब नारद जी के लगा सही बात है, ये तो इंद्र सही बात कर रहा है, ये तो सही में गड़बड़ लग रहा है, बहुत बदनामी कर रहे हैं इंद्र तो, ये इसे कैसे भगवान की कृपा हो सकता है, ये स्वर्ग में इतने टेंशन है, खीणे पुण्य मरते लोगों में सबको डर है, कभी हमारा पुष्ट चला ना जाए, अब कब भाग जाए, फिर कहाँ जाए, क्या होगा, सबके भय है, मन तो इस प्रकार कैसे कृपा पात्र हो सकता है? जो भगवत कृपा का पात्र है वो तो उसका पहला लक्षण निर्भय होगा, वो तो भयभीत हमेशा रहता है, कैसे हो सकता? तो फिर ब्रह्मा जी के बात सुन करके ब्रह्मा जी इंद्र जी ने खूब ब्रह्मा जी के बारे में बताया। बोले उनके लोक ही ऐसा है, बोले ये स्वर्ग आदि लोक तो जब क्षणिक प्रलय होता है इसमें भी नष्ट हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन सत्य लोक तक तो नहीं होता। उनके एक दिन तो कितने लंबा है, बोले हमारा जैसे कितने बीत जाते हैं, 14 मनु शासन काल बीत जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, इतनी लंबी आयु है उनका, ऐसे लोक है उनका, ऐसे सिद्ध सब बड़े बड़े सिद्ध ऋषि उनके पास चारों तरफ रहते हैं और साक्षात महापुरुष के सेवा करते हैं और संपूर्ण विधाता के रूप में पूरे संपूर्ण लोकपाल आदि को पालन करते हैं, शक्ति देते हैं, सबको वरदान देते हैं, सभी से श्रेष्ठ हैं और साक्षात भगवान के शक्ति से प्राप्त सब करते हैं, तो उनका सीधा कृपा पात्र इसमें कोई डाउट नहीं। अरे कृपा पात्र क्या, वो साक्षात भगवान ही है, ये साक्षात भगवान है, उनके ही अवतार कृपा पात्र क्या है। ऐसे इंद्र ने कहा तो आप नाराज जी तो बोले कि वेस्टिंग टाइम यार, यू आर राइट, यस। अब उन्होंने सीधा वहाँ से डायरेक्ट बुकिंग किए, बुकिंग तो करना नहीं था उनको, तो सीधा अपना जाना था उनको, कौन सा फ्लाइट बुकिंग ना रिजर्वेशन करना हो, सीधा वहाँ से डायरेक्ट दिशा में गए। एक बार सत्य लोग उनके पिताजी के घर था, ब्रह्मा के पुत्र वो भी थे, सीधा जा करके ब्रह्मलोक में जब लैंडिंग करने लगे तो वहाँ भी लैंडिंग करने पर से देखे नज़र पड़ा, अब सत्यलोक के जो ब्रह्मा जी के आलय है जो ऑफिस में, उसमें सहस्र शीर्षा पुरुष गर्भ साई विष्णु विराजमान है लक्ष्मी के साथ, और भगवान ब्रह्मा ब्रह्मदेव उनको पुरुष सुक्त पढ़ करके अर्चना कर रहे हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राख्या सहस्रपाद, ये जो स्तोत्र पढ़ करके ब्रह्मा जी स्वयं उनको अर्चना कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी के साथ उनके मरीचि आदि जितने पुत्र थे बोलो पुलस्त आदि बड़े बड़े सब ऋषि महर्षि पुत्र उनके और उनके परिकरगण ब्रह्मलोक के सब मिल करके विविध सामग्री के द्वारा और हजारों सर वाले सहस्र हजार बाहु हजार सर में भगवान महापुरुष रूप में बैठे हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष गर्भसाई विष्णु बैठे हैं और उनको इसे विशेष पूजा ब्रह्मा जी लोग सब कर रहे हैं स्तुति मंत्र से, और कितने प्रकार के भली सामग्री देते हैं, बहुत द्रव्य उनको देते हैं, भगवान स्वयं हजारों हाथ से उसको आरोगते हैं, खाते भी हैं और मुस्कुरा कर हंसते भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सेवा पूजा को स्वीकार करते हैं और ब्रह्मा जी स्तव स्तुति कर रहे हैं, तो नारद जी ने देखे भगवान प्रसन्न होकर के उनके सेवा पूजा स्वीकार करके फिर सहस्र शीर्षा पुरुष उठ करके फिर अपने वैकुंठ को जाते हैं। जब वैकुंठ लोक को जाते हैं तब ब्रह्मा जी भी फिर उनके साथ जाते हैं, जाकर वैकुंठ लोक को भगवान छोड़ करके फिर खड़े रहते हैं दरवाजे पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर, तो भगवान बोलते ब्रह्मा अब जाओ, सृष्टि का कारोबार है संभाल, आप बहुत दायित्व है, गो अब इसमें जाओ काम करो, इसे पास बैठते हैं बोले काम करो, जाओ जाओ अपने काम करो। तो ब्रह्मा जी फिर वापस आए, वापस आकर जब ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठ करके गदगद चित्त होकर के अपने प्रभु का कृत्य, कैसे कृपा है मेरे ऊपर, कैसे मेरे ऊपर उनके दया है, इस बात को कह करके नयनम गड़दस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, आंख से अंसु बहाते हुए गला गदगद कंठ से इस प्रकार वर्णन कर रहे थे, प्रभु के गुणगान कर रहे थे ब्रह्मासन में बैठ करके। अब नारद जी ने देखे कि अभी तक ये नहीं पता था पापा मेरे कैसे कृपा पात्र है, तो नारद जी अब तो अभी तक तो जो गए थे किसी को प्रणाम करने के लिए नहीं बना था, लेकिन ये तो डैडी है, तो नारद जी अब सीधा पार्किंग में लगा करके गए ब्रह्मलोक में, सीधा प्रवेश किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम, अभी तक किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करना, दंडवत प्रणाम करके था नहीं, चांस नहीं था, दंडवत प्रणाम की, अष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम कहते हैं, आजकल तो दंडवत को करते नहीं, ऐसे मुंह में दंडवत बोल देते, अरे ये कैसे दंडवत होता है? आप जानते हैं दंडवत किसको कहते हैं? दंड जैसा, एक डंडा जैसा गिरता है स्ट्रेट ऐसे गिरना, मतलब ऐसे गिरना नहीं, नाक पर टूट जाएगा, मतलब ऐसे सीधा। दंडवत प्रणाम का अर्थ है अष्टांग प्रणाम, अष्टांग के द्वारा प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। और एक होता है पंचांग प्रणाम, एक पंचांग एक अष्टांग, जो अष्टांग प्रणाम है उसी को कहते हैं दंडवत प्रणाम। अष्टांग प्रणाम जानते हैं कैसे होता है? प्रभु जी बोलते हैं कोर्स के, कोई एक आपने से बता सकता है कौन आठ अंग लगना चाहिए अष्टांग प्रणाम में? कोई एक मैं जानना चाहता हूँ जो कोर्स किए नहीं किए, अभी प्रभु जी के सामने पूछता कौन सा आठ अंग उपयोग होता है अष्टांग प्रणाम में? वो भी मना कर रहे हैं। सदाचार किसकी पता है? हाँ बोलिए, हो गया आठ, घुटने छाती माथा
अष्टांग प्रणाम यहाँ से जाते हैं दिमाग
अष्टांग प्रणाम में जो आठ अंग लगता है उसमें दो पैर दो हाथ, इसे दो दो नहीं एक एक माना जाए, मतलब पैर पैर मतलब एक पैर नहीं दो पैर में, इसलिए कहा पद मतलब दो पैर, एक पैर में नहीं करना, पैर एक दो पैर, फिर दो हाथ दो जानू, कितने हुआ? तीन, बख्य मस्तक, और ये पांच शरीर का अंग होगा, बाकी तीन जो है मन नेत्र और वाणी, याद रहा? ये तो भूमि को स्पर्श करेगा, दो पैर स्पर्श करेगा भूमि को, दो जानु स्पर्श करेगा, छाती बख्य स्पर्श करेगा, मस्तक स्पर्श करेगा, ये तो जमीन को टच करेगा, और आंख में, आंख तो नीचे रहेगा किसे देखेगा, लेकिन ये मन में चिंतन करेगा, मन और आंख इसलिए कहा गया, मन और नयन में प्रभु जो स्वरूप को ऐसे ध्यान करेगा, और मुख से कुछ बोलते रहेगा मंत्र, मुख में चुपचाप रहे, तभी जाकर अष्टांग होगा, ये अष्टांग है। और उसका विधान है अष्टांग प्रणाम में कटी से ऊपर में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए शरीर में, अगर कोई कपड़ा पहन करके किया तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ शास्त्र में जो विधान बताया गया है, हाँ बहुत भारी प्रावधान, अगर वस्त्र पहने तो पंचांग किया जा सकता है, अष्टांग के लिए मना किया गया, अष्टांग के लिए मुक्त शरीर होना चाहिए, मुक्त शरीर। तो इस प्रकार के नारद जी जा करके अपने पिताश्री के चरण में राम करे अष्टांग प्रणाम किए, पंचांग में घुटने रख करके, वो तीन नहीं लगेगा ना उसमें, जानू नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, है ना, नहीं तो जाकर प्रणाम करके नारद जी ने उठे, उठ करके अपने बिना बजा करके और अपने ब्रह्मा जी की पिताजी की जो स्तुति गान करने लगे, बोले हे सृष्टिकर्ता, हे मेरे पिताजी, मैंने सुना भी था जानता था लेकिन आज तुम्हें देखा, सचमुच आप ही भगवान के कृपा पात्र है, आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा है, सारे शास्त्र वैदिक वाङ्मय आपसे सृष्टि हुआ है, सारे देवी देवता लोकपाल पर्यंत आप ही के बसवर्ती है, आप सबको पूरे सृष्टि को सृष्टि करते हैं, पालते हैं, संहार करते हैं, सारे को सम्मान देते हैं, वरदान देते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे बोलने लगे, बोलते 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 बोले क्या बोलूं, आप तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण की कृपा, कृष्ण के पुत्र क्या स्वयंभू, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र आप, लक्ष्मी जी तो थे, लक्ष्मी जी के पुत्र तो गर्भ से पुत्र नहीं हुए, डायरेक्ट भगवान से प्रकट हो गए, तो भगवान ही है आपने, आप ही तो भगवान है, ऐसे जैसे कहे ब्रह्मा जी तब तक बैठे थे ऑफिस में, हुआ तो पिताजी को विदा करो, याद जैसे सुने नारद जी से तुरंत व्यस्त होकर के नारद जी ने, नारद जी की बात सुन करके क्रोधित होकर के
ब्रह्मा जी ने अपने कान बंद करने लगे। कान ब्रह्मा जी के कितना कान है? 8 कान। हाथ कितना है? 8 हाथ है। कोई देखे है ब्रह्मा जी की पिक्चर?
14
ब्रह्मा संहिता के ऊपर ब्रह्मा जी के चित्र है। ब्रह्मा संहिता के ऊपर जो ब्रह्मा जी के चित्र है, जिन्होंने देखे हैं, सचमुच आप देखना जाकर के आप पहचाने चलेगा लेडीज एक जेंट से। जिसने भी देखते बोलते कि लेडीज से ना जेंट्स थे ब्रह्मा जी। ऐसे आप देखो जाकर के। तो 4 हाथ में 8 कान कैसे बंद करेंगे? तो इसलिए व्यस्तता, ऐसे इसको इसको जल्दी जल्दी बंद करना, सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। अपने कान बंद करके डांटे बिकल होकर, बोले नारद व्हाट आर यू टेकिंग, तुझे बचपन से मैंने यही शिक्षा दिया था, कितने बार तुझे सिखाया पढ़ाया लिखाया, ये ट्रेनिंग दिया था तूने, आकर यहां तक करता, मेरी बड़ाई करता। दासोस्मी, मैं उनके दास हूं, तू क्या कहता है? ऐसे कह करके नारद जी को डांटे, डांट कर खड़ा कर बोला, तू नारद तू कैसे इसे बताता यार, तू तो विचारण आचार्य, बोले विचरण करने में आचार्य है, ट्रैवलिंग आचार्य है, हमेशा घूमते रहता है सारे लगा में, सारे जगह का खबर रखता है, तू फिर आके इसी बात कर रहा है, मैं तुझे यही शिक्षा दिया था बचपन से। अरे जो साक्षात प्रभु हैं उनके सामने एक उनके शक्ति, एक तुच्छ शक्ति है, कोई वरिष्ठ शक्ति नहीं है, एक तुच्छ शक्ति जिसका नाम है माया शक्ति, ये उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है ऐसे ही, और उनके इच्छा से वही माया शक्ति ने ये चराचर सृष्टि का रचना किया है, उनके पालन पोषण संघार सब कुछ वही कर रहा है, हम लोग भी सब उन्हीं के वशवर्ती होकर, उन्हीं से मोहित होकर सब कर रहे हैं, इसी से बचने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, सब इससे फंसे हुए। अब तू कहता है कैसे, कैसे बात कह रहा, ऐसे कह करके नारद जी को डांटे, डांट करके चुप करो, चुप, ऐसा फिर कहना नहीं कभी। नारद जी ने चुप हो गए, पिताजी डांट रहे हैं। तब फिर ब्रह्मा जी ने बोले किसी प्रकार अब बोल दिया कि मैं कृपा पात्र हूं, कैसे बोला? बोले पापा आप उनके बेटा है। बोले बेटा है, माँ कौन है? बेटा तो तभी होगा जब माँ बाप जोगी हो, दोनों होंगे। बोले अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है मैं कैसे बेटा, आप सृष्टि करने का दायित्व दे दिए, इतने बड़े भारी गुरु दायित्व दिए, जो हमेशा मन में अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं करके, लेकिन मैं कुछ नहीं, हमेशा मुझे भी भय रहता है कि सत्य लोक का भी अभी नष्ट होने का समय आ रहा है, अभी सहस्र कल्प पूरा होने जा रहा है, इस महाकाल के भय से मैं भी भयभीत हूं, इसी के लिए मैं सहस्र शिष्य पुरुष की पूजा कर रहा हूं, क्योंकि सत्यलोक के नाश के विनाश का काल आ रहा है, इसलिए। बोले अगर मेरे ऊपर कृपा करते प्रभु, मेरे ऊपर खुश होते, तो मैं जो सृष्टि जो किया हूं, मुझे दायित्व दिए हैं, इस सृष्टि में जितने बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता, दानव, सबको सृष्टि मैंने किया है, सृष्टि में मैंने उनको सब शक्ति प्रदान किया हूँ, ताकत पावर दिया हूँ, एम्पावरमेंट किया हूँ, लेकिन मेरे सृष्टि को मेरे वरदान से शक्ति आदि प्राप्त करके इतने गड़बड़ी कर रहे हैं, और प्रभु के साथ जाकर के बड़े ऐसे व्यवहार खराब किए। बोले क्या कहूँ इस बात, बोले अभी अभी इंद्र से आया ना, वो इंद्र क्या कम काम क्या, मेरे पद से गर्वित होकर के जाकर के भगवान के घर के ऊपर जाकर अटैक किया था, ब्रज के ऊपर ऐसे करता था जाकर, और मैंने वरुण देव को उनके पोस्ट दिया, वो पोस्ट से मदवत होकर के भगवान के पिताजी को जाके चुरा के वरुण देव ले गया, जमुना बांध के रखा और जाके छोड़ा, शंखचूड़ जख्य को दिया, वो भी जाकर के उनके प्रेस को हड़पने लगा, और क्या बताऊं, जितने बड़े बड़े असुर सब पावर कहां से मिले, मेरे से ही सप्लाई लिए, मैंने सप्लाई दिया सबको, अब लेकर के इतनी बदमाशी किए कि प्रभु को आना पड़ा।
बोले क्या कहूँ, अभी रिसेंटली अब ये हिरण्यकशिपु, हिरण्य के दोनों भाई मेरे से वरदान प्राप्त किए, हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त किए करके ऐसे ही नाक में दम किया, सृष्टि को ऐसे ही परेशान करने लगा। तो प्रभु ने आए, नरसिंह देव में आकर के उनको नाश किए, उनको बद्ध किए। बद्ध किए तो थैंक यू देने के लिए मैं गया था सारे देवताओं के साथ में लेकर के, लेकिन डर के मेरे पास भी नहीं जा पाया, डर के मारे पास भी नहीं गया। दूर से जाकर के बड़ी लंबी कथा जैसे करके लक्ष्मीदेव ने जैसे किया, लेकिन बाद में जो प्रहलाद का करोनेशन सेरेमनी हुआ, उसका जो राज्य अभिषेक हो रहा था, इस समय मैं डर के पास में गया मंत्र पढ़ करके कि प्रभु पास में, जैसे कि बोले हे ब्रह्मा तुम हमेशा ऐसे गड़बड़ कर रहा है, सब असुर को ऐसे मनमानी भर दे रहा है, ऐसे तंग करते हैं। बोले मैं कांप गया, बोले इसी मुझे डांट कर बोल दी, बोले मेरे पुत्र जान करके मेरे नाभि कमल से मुझे पैदा किए थे, अब गर्भजात पुत्र समझ करके मुझे कोई पीटे नहीं, अभिशाप नहीं दे दिए, यही बड़ी बात है, इसको बड़ी बात मानता हूँ, लेकिन डांट दिए मुझे। और क्या कहूँ, कभी मेरे से मधुर वचन भी एक बात नहीं कहे ऐसे। बोले और तो क्या कहूँ, अगर मेरे ऊपर कृपा होता, मैंने स्वयं इतने बड़े मिस्टेक किया, माफी मांगा तो देखे तक नहीं मेरे। बोले क्या किए, बोले अभी मैं ब्रज में चला गया था, ब्रज में गया था, मुझे पता था मेरे पापा ब्रज में ग्वाला बनकर गए हैं, प्रभु हमारे गए हैं, लेकिन मुझे पता तो था, लेकिन मैं गया देखने के लिए, लेकिन जा करके देखा, देख करके मुझे लगा कि कुछ गड़बड़े डाउट है, ये कैसे हो सकता है। बोले मैंने तो रूल बनाया, बोले मैं जाकर एक्चुअली, बोले मैं मेरे काम में था, बाजा बाजा साउंड सुनने लगा, मैं पूछा असिस्टेंट की साउंड कहाँ से आ रहे पता लगाओ, ना सर फेस्टिवल हो रहा है नीचे। क्या फेस्टिवल पता लगाओ, ना वो अघासुर बद्ध है, अघासुर बद्ध हो गया, कैसे मरा, ना वो इसी ने कृष्ण ने मार दिया अघासुर को, ग्वाल बाल। अरे अघासुर के बद्ध सुन करके मैं तुरंत अपने गाड़ी फुल स्पीड में लेकर आया देखने के लिए अघासुर, और रास्ता में देवता लोग से जा रहे थे, बोले सार सीन आप सो, अब सो खत्म हो गया, और नहीं बोले अरे मैं इतने दूर तक आ चुका हूँ, बोले ब्रह्मलोक से लेकर धरती तक आ गए, अभी अब क्या करूँ, आ चुका हूँ तो देख लूँ, तब आया, अब तो अघासुर तो मर पड़ा था, खत्म हो चुका था, बैठ करके जो रोल करने वाले सब खा रहे थे बैठ करके जो रोल करने वाले पार्टियर हो, अब ग्रीन रूम से हट करके जा करके प्रसाद चल रहा था उनका जमुना किनारे बैठ के प्रसाद पा रहे थे। बोला मैं उनको देखा, बोला चलो कुछ तो देख लूं, उनको देख रहा था कि क्या एक कृष्ण बैठे हैं, उस दिन बलराम नहीं थे, उस दिन पार्टी में अकेले कृष्ण थे, और चारों तरफ राउंड 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 करके सारे गोप कुमार बैठे हैं, सभी देख रहे हैं कि कृष्ण मेरे ओर देख रहे हैं, जो सामने बैठे हैं वो भी देख रहे, कृष्ण पीछे बैठे मेरे भी कृष्ण देख रहे हैं, साइड में भी कृष्ण देख रहे हैं, मतलब कृष्ण का मुख चतुर्दिग में है, सभी देखते हैं कृष्ण मेरे ओर देख रहे हैं, सारे बैठे हैं, बैठ करके भोजन सभी अपना अपना टिफिन निकालते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब बछड़े चराने जाते हैं तो बड़े टिफिन बक्स कैरी करके नहीं जा पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे इतने नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए केवल लंच पैकेट ले जाते थे, घर में नहीं खाते थे, कलवा नहीं करते थे, ले जाते थे, क्या लेते थे, बच्चे हैं टिफिन में क्या खाएंगे, एक कचौड़ी, एक परोठा, आधा गिलास कोई छाछ पी लिए, कोई कोई लड्डू बेसन का, कोई बूंदी का, कोई इस प्रकार की जो अपना अपना घर से माँ ने माता लोगों ने मना के दिए, और छोटे छोटे डब्बा कोई डब्बा में प्लास्टिक में पैकेट करके दे दिए, उसको लेकर गए और सारे बैठ जा करके सभी के अपना अपना टिफिन खोले। भगवान को माता यशोदा ने उस दिन दही भात दिया था, भगवान ने अपना दही भात निकाल करके और यहाँ से बाएं हाथ में ले लिए दही हाथ, एक और रखे हैं यहाँ, एक टेंटी के आचार, एक कच्चा मिर्ची के आचार और एक आचार, तीन प्रकार के आचार इस अंगुल के रख करके दही हाथ ले भात ले करके, दही भात देखने के लिए सादा सफ़ेद है, भगवान देखने के लिए कैसा काले हैं, मैचिंग कलर है, तो लेकर ऐसे खा रहे थे, दूसरे को देखकर खाते खाते कोई भूखे न जाकर इधर से हेड में हो गया, थोड़ा इधर भी लगा है, थोड़ा मुख में गया है, इस पर अगर देखें उनका बाजू में दूसरा लगा, बोला क्या खा रहा है तूने, दही भात है खट्टा, बेकार मेरे माँ ने क्या गरम कचौड़ी दिया है, क्या बताऊं, क्या टेस्ट है, क्या स्वादिष्ट है, क्या सेंट है उसका, कैसा ऐसे बनना क्या भगवान की, ऐसा अच्छा ना रे, खाना खाया नहीं ऐसा, कभी कचौड़ी खाया नहीं, एक मुंह से दिखा कर उनके सामने मुंह में एक और खाया है, खा करके और बाकी जो हाथ में लेता दिखा रहा है, अरे क्या कचौड़ी बताओ। तो भगवान बोलते हैं मुझे थोड़ा दे दो यार, तो सचमुच वर्णन कर रहा था कि भगवान भी खाए, तो उनके मुंह में खाया हुआ था वही झूठा को भगवान ने दही हाथ लेके फिर मुंह में उसके हाथ से खा लेते हैं, उसको खाते ब्रह्मा जी देखते हैं खड़े होते हैं व्हाट। दूसरे बोलता है कि अरे कन्हैया क्या कचौड़ी परोटा क्या बताऊं, डबल परोटा बना के माँ ने दिया, ये इसे माखन बीच में डाल करके बनाया, ओ तो वो भी परोटा खा कर दिखाता है, उसको भी खाते जाकर दो चार ऐसे इधर उधर उनके झूठा खा कर देख करके ब्रह्मा जी के दिमाग आउट हो गया, बोले ये मेरे पापा हो नहीं सकते, बोले मेरे पापा की पूजा का विधान मैं नहीं बनाऊंगा, विधि मैं हूँ, ब्रह्मा बोलते हैं मैं विधि हूँ, सारे नीति नियम जो मैनुअल ड्यूटी वर्शिप मैनुअल मैंने बनाया, यस ये इसका नया बना सब ओरिजिनल प्रिंट उनका है, बोले मैंने विधि बनाया सारे कैसे भोग लगाना, बोले क्या विधि ना, सबसे पहले तो सेकंड इनिशिएशन होना चाहिए, नहीं तो भोग लगा नहीं सकते, मेरे पापा को भोग लगाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है क्या सेकंड इनिशिएशन, फास्ट में भी काम नहीं चलेगा ना, सेकंड इनिशिएशन में लेने के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा वो बताना, भक्ति शास्त्री IDC ये सारे है ना, नहीं हाँ रिकमेंडेशन, फिर भी रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा बाद में, बोले सारे करे सेकंड इनिशिएट हो जाए, फिर पहले तो स्नान करना पड़ेगा, स्नान करने के बाद शुद्ध धोत वस्त्र पहनना पड़ेगा, द्वादश तिलक धारण करना पड़ेगा, फिर जा करके जहाँ पिताजी रहते हैं उन मंदिर में जा करके घंटा ताड़त्रय बजा करके घंटा बजा करके मंत्र पाठ के साथ अंदर जाएगा, भगवान मंत्र पाठ उद्यापन करके और थाली रख, बाएं हाथ तो टच भी नहीं हो सकता, बाएं हाथ इतने अशुद्ध है, दक्षिण कर में अब आचमन करके ताली लगा करके तुलसी पत्ता डाल करके विधि मुताबक मंत्र सिद्ध करके आचमन के साथ उस खिलाने जो विधि, ये क्या चल रहा है इधर, कोई सेकंड इंसिशन तो नहीं, नहाए भी कोई नहीं, अब बच्चे सब उठे आ गए इसे, वो टॉयलेट कर गए थे वैसे आए सुबह सामने के वाले बच्चे उनको कौन सा, बोले जमुना बनाएंगे तो पर क्या कोई एक भी सेकंड इंसिडेंट नहीं है, कोई नहाए नहीं, तिलक उलक बात ही कर कुछ भी नहीं, मंत्र जंत्र के क्या बताए, सारे बछड़े चराना में पड़े हैं, कोई पढ़े लिखे ABCD OIU कुछ भी नहीं आता है, कोई नहीं पढ़े हैं, अब यहाँ बैठ करके और दूसरे तो बाएं हाथ में रखकर खा रहे हैं, ये उल्टी उल्टी दशा, सब उल्टी चल रहा है, और दूसरे का झूठा टू मच, ये नहीं हो सकता। तो बोले फिर क्या करो, मैंने जो नीति नियम बनाया था ये तो कुछ नहीं दिखता है, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं, मेरे प्रभु कैसे हो सकता है, मैं टेस्ट करना पड़ेगा, ये है क्यों गड़बड़ी है, वो डुप्लीकेट है कि सही है क्या पता नहीं, टेस्ट करने के लिए क्या करे, बोले ये तो सब भोजन लीला चल रहा है, बछड़े यहाँ बाजू में अपने आराम से बैठे हैं, जुगाड़ी समझते ना, अच्छा तो ब्रह्मा जी ने चांस मिला, सारे बछड़े को उठा कर लेकर के दूर कई गुफा में छिपा, अब देखता हूँ क्या करें, जिस बछड़ा को सारे उठा लिए, ब्रह्मा जी की बड़ी ताकत है, आपने जो से ले गए तो एक बालक का नजर पड़ा, अरे बछड़े नहीं है, वो खड़ा हो गया खाते थे, डर गया, बोला घर में पापा आदि डांटेंगे पिटेंगे, बछड़ा हम लेकर आए थे चले गए, बछड़ा ही नहीं, तो सारे का नजर गया, कोई बछड़ा नहीं था, सारे डर गए खड़े हो गए, कन्हैया कोई बछड़ा नहीं है, तो कृष्ण बोले कोई बात नहीं, सब बैठ जाओ खाओ, मैं जा रहा हूँ, सभी का पूर्ण भरोसा था कृष्ण के ऊपर, अगर वो जाएगा वो ढूंढ के ले, हम जाकर कहाँ ढूंढने, सारे बछड़े उनको मानते हैं, वो नाम पुकारेगा बछड़े दौड़ कर आ जाएंगे उनके पास, वो ले आएगा, उनके भरोसा सबका था, तो इसलिए बोले तुम ही जाओ, हम रखेंगे आपके लिए कुछ, हम अभी बैठे हैं धीरे धीरे खाते हैं, आप लेकर आ जाना, तो सबको खाना बैठा करके और कृष्ण गए, सब बोले कि हम तेरे लिए रखे, तुम जाओ। कृष्ण गए वशिष्ठ ढूंढने के लिए, तो ब्रह्मा जी तब भी देख रहे हैं, अच्छा ढूंढने का, देखते हैं क्या ढूंढने का। मेरे पापा तो सर्वज्ञ शिरोमणि है, भगवान को सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कौन है, सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान सभी जानते हैं, सब कोई ऐसा चीज नहीं जो उनको ज्ञात हो। अब वो जा करके बछड़े के नाम पुकार करके बुलाते हैं, कोई बछड़े नहीं आते हैं, इधर जाते हैं इधर जाते हैं, रोते हैं, ऐसे ऐसे आंख से आंसू बह रहा है, पूछ करके रोते हैं, नहीं आते हैं, डर के है बछड़ा नहीं मिल रहा है करके हताश होकर के आए। उसी को ब्रह्मा जी देख रहे, बोले ये क्या है, इतने ढूंढ रहा है इधर उधर, रो भी रहा है, बछड़ा नहीं मिल रहा। उनका डाउट तो और बढ़ते चला गया, और डाउट शक और बढ़ते चला गया। तो इधर से ब्रह्मा जी बोले देखता हूँ मजा, वो जितने बालक को उठा लिए, जैसे भगवान गए उनके जो साथी ग्वाले थे सारे ग्वालों को उठा लाके बिछवा दिए। भगवान ने हताश होकर आए, कोई बछड़े नहीं मिले उनको एक भी, हताश होकर बोले चलो खाते नहीं ब्रेकफास्ट, कम से कम आके देखे ब्रेकफास्ट कोई ही नहीं, सारा खाली पड़ा। आप लोग आप ब्रह्मा जी ने देखे तो भगवान ने और रोने लगे, कहर करके रोने लगे कि अभी अकेला हो गया, ना कोई बछड़ा है ना कोई बालक है, कैसे मैं वापस जाऊँ क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी बोले वो तो नहीं ना कैसे, चलो फिर देखता हूँ क्या करेंगे, मजा देखता हूँ क्या करेंगे। भाई मेरा तो बहुत हैवी ड्यूटी है ना ब्रह्मा जी की, भाई पूरे ब्रह्मांड के कारोबार है ना, तो ऑफिस छोड़कर इतने समय ज़्यादा ऑप्शन नहीं रह सकते, लागे तो जाता हूँ शाम के समय देखूंगा, शाम को जाते समय क्या करता है, अकेला जाएगा कि क्या करेगा, रोएगा धोएगा, तब देखें मदद करूँगा दे दूंगा उनको। तो ब्रह्मा जी ने वापस जा रहे थे ऐसे छोड़ करके तुरंत अपने ऑफिस में, बोले शाम को वापस आऊँगा। फिर जब जा रहे थे जा करके ब्रह्मा जी के जो गेट है ब्रह्मलोक का मेन रिसेप्शन गेट है जो उनका एंट्री गेट में जो उनका सिक्योरिटी थे वो बैठे थे, उनका सिक्योरिटी जाते समय में साथ सैल्यूट करके सर जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी आए वो बैठे चेयर पर, एक पैर पर इसी पैर उड़े बैठाकर बैठे थे, ब्रह्मा जी बोले खड़े नहीं हो रहे, मेरे सिक्योरिटी खड़े नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन लेकर गए थे, हन बजाए तो देख कर भी उठे नहीं। ब्रह्मा जी होगा गया, नशे पसमा कर गया, जाते समय देखा दिख जाते अभी है, गेट भी नहीं खुल रहे हैं, खड़े भी नहीं हो रहे हैं, और दोबारा हन बजाए आओ आओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपने अपॉइंटेड सिक्योरिटी आज इसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको, तो हमारे गुस्सा आएगा ना। नहीं आप किसको, आप सिक्योरिटी गार्ड रखा है आपके, इससे दुर्व्यवहार करेगा आप गुस्सा होंगे नहीं। ब्रह्मा जी गुस्से होकर के जब गाली देने लगे, बोले आओ ना, अरे तुम हो क्या गया ना, हो क्या गया। जैसे ब्रह्मा जी ने गुस्से से आ गए उनको गाली दे, पास में एक उनके कलर पकड़ करके थड़ाम करके मारा है तमादी से। ब्रह्मा जी के तो बोले अब क्या करूं। सिक्योरिटी लोग तो होते ही बड़े तगड़े, तो ब्रह्म लोग का ऐसे रेंटेड सिक्योरिटी तो उनका अच्छा सिक्योरिटी होंगे ना। पूछो तो मारा तड़प करे, दूसरा पकड़ करे और एक मारा, बाप रे बाप। वो बोलते मेरे हाँ हाँ जानते हैं तुम ब्रह्मा जी हो, मारे पकड़ करके ब्रह्मा जी गेट से भाग रहे, अपने घर में एंट्री नहीं कर पाए। अब किसको केस करेंगे बताओ, कंप्लेन किसको करेंगे। कभी सोच सकते हैं आप घर के मालिक हो, आप जिसको आप सिक्योरिटी करके रखा है वही सिक्योरिटी आपको मारे, किसको कंप्लेन करेंगे आप, कोई है किसको कर? मालिक तो आप ही है। आप तो ब्रह्मा जी सोचा वो जहाँ भाई घुसने नहीं होते, पिटाई कर रहे हो क्या करूँ। अपने घर में भी नहीं जा पाए, मार खा करके गाल से फूल गया, फिर वापस आए, बोले चलो और क्या करूँ, टाइम खराब, जाकर देखता हूँ यहाँ का हो रहा है। वापस आकर जब पहुँचे नीचे आकर देख रहे हैं एग्जैक्टली जैसे देखे थे, सेम वही जमुना किनारे जैसे भगवान बैठे थे, ऐसे बैठ के कचौड़ी खा रहे हैं, दही भात खा रहे हैं, सारे बछड़े सोए हुए हैं, सारे बच्चे बैठे हैं। ब्रह्मा जी चश्मा लगाए, बोले नंबर बदल गया क्या हमारा, अरे मैंने तो छिपा कर रहे थे, ये सारे बैठे किसे, सारे बैठे हैं से देखे, बोले हाँ बैठे थे सारे, वही थे, बछड़ा भी है, बच्चे भी हैं, ये भी है, सब वही वही जगह। बोले वो जो मैं छिपा कर दो, अरे ओ सर उठाकर वहां देखे, अमोघ दृष्टि ब्रह्मा जी का, वहां देखे सारे वो सोए हुए हैं, फिर इधर तो किसरा बैठे हैं, इधर सोए, कौन सा ओरिजिनल, कौन से डुप्लीकेट, कौन से क्या, फंस गए ऐसे अधड़ गुण में फंसे कि समझ नहीं आ रहा है। चश्मा लगाए उतारे, इधर साइज में रखे, इधर देखे, उधर देखे, इधर देखे, परेशान हो गए, कौन सा सही सेट, कौन सा डुप्लीकेट सेट, कि दोनों सही कि दोनों गलत, कि मैं हूं स्वप्न देख रहा हूं कि दिन में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी अभी तक सोच रहे थे मैं सृष्टि करता हूं। जितने जीव जंतु है 84 लाख जोनी में, सारे मनुष्य से लेकर गाय बछड़े सब, सबको तो आपने कर्म के अनुसार मैं ही सृष्टि किया, जन्म दिलाया, मेरे हाथ से कर्म हाथ से बने, लेकिन उनको ये पता नहीं था ये जो सेट हैं ये कर्म के दायरे पर नहीं है, ये आपके इंजीनियरिंग मेथड में नहीं है, ये तो डायरेक्ट उनके हैं, पापा के घर के हैं, ये नहीं पता था उनको, वो कर्म के अधीन में कोई नहीं थे, वो उनको नहीं पता था, उनको जो फॉर्मूला वही उनके हिसाब से देख रहे थे, लेकिन अभी जो इनके कन्फ्यूजन हो गए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए, तो कृष्ण देखे बेटा बहुत कन्फ्यूजन पड़ा है, क्या कर, बहुत हो गया, तब उन्होंने उनको थोड़ा पहचान दी, क्या पहचान दी, आईडी प्रूफ दिखाए, आईडी प्रूफ क्या, क्योंकि भगवान के इष्टदेव, ब्रह्मा के इष्टदेव कौन है, नारायण, चतुर्भुज नारायण है ना, तो नारायण सब चतुर्भुज हो गए, जितने बछड़े थे सब चतुर्भुज, जितने ग्वाले थे सब चतुर्भुज, वो तो देख करके एक को क्या प्रणाम करेंगे, सारे इष्ट देवे, हजारों इष्ट देवे, सारे बछड़ा, सारे सारे नारायण हो गए, ब्रह्मा जी और कंफ्यूज हो गए, तभी लगा कि कुछ गड़बड़ है, मैं फंस गया, कुछ गलती किया लगता है, टेस्ट करेंगे, अब तो माफी मांगे, प्रणाम धूम करके गिरे अष्टांग हो भी, गिर करके, अब देखो आप लोग दंडवत प्रणाम करने में तो ईजी है, क्योंकि आपके एक सर है, एक बार गिरे सर के तो प्रणाम हो गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए पूरा 360 डिग्री लेना पड़ेगा, तब जाकर प्रणाम कंप्लीट होगा ना, चार सर लगेगा ना, हाँ घूमना पड़ेगा, चार सर लगेगा अष्टांग में, सब सर लगना चाहिए, मस्तक, वो एक मस्तक है नहीं, चार मस्तक, चार मस्तक भूमि में टच करने के लिए पूरा 360 डिग्री टर्न लेना पड़ेगा, एक फिर और एक टर्न मारे, दूसरा फिर और एक टर्न, तीसरा फिर और एक टर्न मारे, चौथा, तब जाके प्रणाम कंप्लीट हुआ। ऐसे ही लोट पोट होकर के विचार प्रणाम कर रहे थे स्तुति पाठ के साथ, लेकिन कृष्ण ने देखे तक नहीं है, बात करना तो दूर बात, देखे तक नहीं, ब्रह्मा जी बड़े बोर हो गए, देखते तो नहीं, वो देखे नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनके ओर देख करके, उनके हसमुख बदन को देख कर खुश हो गए, बोले इतने में रहूं और क्या करूं, वो देखे नहीं, गुरुतर अपराध हो गए, यही बात बोलते नारद, मेरे से इसे अपराध हो गया कि मेरे ओर देखे तक नहीं है, आप बोलते कि मैं कृपा का पात्र हूं, ऐसे ऐसे मेरे बल से इतने अपराध मैं करता हूं, मेरे से बल से इतने होता है, अरे नारद मैं बताता हूं, सुनो मेरे प्रभु, भगवान की कृपा तो केवल भक्तों के ऊपर होता है, भक्ति के बस है, भक्ति किस द्वारा से प्रसन्न होते हैं, केवल उनके भक्तों की कृपा करते हैं, और कोई भक्त किसी को कृपा नहीं करते हैं, मैं तो भक्ति तो दूर बात है, भक्ति कहने के लायक नहीं है, भक्ति तो बड़े दूर की बात है, यही मैं सबसे बड़ा प्रयास करता हूँ कि मेरे से अपराध ना बन पड़े, मैं भक्ति भक्ति तो होता ही नहीं, अपराध कम से कम ना हो जाए, यही सतर्क से पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, फिर भी अपराध हो जाता, भक्ति कब होगा, भक्ति तो हुआ ही नहीं अभी, ऐसे बनकर रहा हूं, वो इसी से बचकर कहीं किससे मेरे कोई अनबन ना बन पड़े, इसीलिए मैं इतने प्रयास करता हूं कि फिर भी हो जाता है, उनसे माफी भी नहीं मिलता, और आप बोलता है कि कृपा कहां, कृपा किस प्रकार, सचमुच भक्ति जो है, भक्ति महारानी का यह स्वभाव है, ये स्वयं अपने आप प्रकट नहीं कराती है, छिपा कर रखेगा, भक्ति अपने को छिपाता है, दन्य के द्वारा छिपा कर रखता है, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ जो बता करके छिपे, सचमुच ब्रह्मा जी के मन में भी ऐसे जो सत्य लोक की समय नाश आ रहा, उसके भी डर था, बस एक मिनट में पूरा करते
तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने लोक के नाश और इस प्रकार के विपद, इस प्रकार के महाकाल आदि के सुचिंतन करके वो भी बड़े विकल अवस्था में है और इतने बड़े ब्रह्म पद का जो दायित्व, इसके लिए भी और टेंशन में बेचैनी में है। इस प्रकार से बोले, मेरे से तो कभी भक्ति तो हो ही नहीं सकता है, भक्ति होता नहीं, केवल कोई गलत ना कर दूं, अपराध ना कर दूं, इसी ताक में बैठा हूं, लेकिन फिर भी हो जाता है, और हो भी जाता है तो जाकर माफी मांगता हूं और माफ नहीं करते। अतु नारद सोचता है कि मैं कृपा पात्र हूं, कृपा पात्र मैं नहीं हूं, सचमुच अगर कृपा पात्र तू बेटा अगर ढूंढना चाहते, मैं बताता हूं कि इस ब्रह्मांड में तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है, मैंने खुद ऊपर से बैठा, हेड ऑफिस से बैठा हूं, मैं देख लिया ब्रह्मांड में तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तू सर ढूंढना चाहते तो जाओ, तेरे भाई साहब है शंकर महादेव, वो कृपा पात्र है। आप ब्रह्मा जी ने शंकर जी के क्या क्या महिमा बना करके उनको कन्फर्म कर देंगे नारद जी को कि यही कृपा पात्र है, ये काल सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।